पैर से हो, और माहौल मस्जिद का जो एक स्पिरिचुअल माहौल होता है हम उसको बेहतरीन तरीके से ले सके। आप सब जानते हैं कि आज हम इस बुक को शुरू करेंगे। आप में से जो बुक लेना चाहता है हाथ खड़े कर दें, साथ ही आप खुद पकड़ा देंगे। जो नहीं लेना चाहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए बुक्स हैं भी नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन यह कि आप लोग कोशिश कीजिए कागज़ कलम के साथ अपनी बातें खुद लिखें, क्योंकि जो चीज़ें हमारे अपने हाथ से लिखी जाती हैं ना, वो हमारे लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो हम शुरू करते हैं, कोशिश करेंगे। ये बच्चे अगर इधर बैठे ऐसे इस फाइन, अगर आपको फील हुआ तो ये इसका जो भाई है ना, इसके साथ वो शीशे के उस तरफ बिठा दीजिएगा, आवाज़ उधर भी आती, लेकिन आप उधर नहीं जाइएगा। आप चली गई तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आइए शुरू करते हैं। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والثمرات وبشر الصابرين قال الله تبارك تعالى في المقام الآخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। अल्लाह ताला का बहुत एहसान और उसका फ़ज़ल और उसका करम है, हम इसको महसूस कर सकते हैं कि आज उसने हमें अपने दीन के इल्म के लिए एक बार फिर घर से बाहर निकाला, और हम वो सुन्नत पूरी करने के लिए निकले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात और आपकी अजवाज की भी थी। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करेंगे और इसका नाम है मुसीबतों से कैसे निपटा जाए। आप देखते हैं कि हर इंसान दुनिया में किसी न किसी मामले में आजमाया जाता है, और जब हम पे कोई मुश्किल आती है तो हमें उस वक्त समझ नहीं आता कि हम क्या करें। मैं आप सबकी नज़रों का इम्तिहान लूँगी, आप सबको बाहर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए। जब इल्म सामने हो, उस्ताद है, किताब है और जगह मौजूद है, तो इसके बाद फिर ला तमुद्दन आईनई का इला मा ज़हरा, अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी नज़रों को लंबा ना करो इधर उधर, जो कि दुनिया की रौनक है। तो अच्छे तालिबे इल्म जो होते हैं वो अपनी किताब पे फोकस करते हैं। इस वक्त अगर आपका जहन मेरे अल्फाज के साथ साथ नहीं चलेगा तो आपको यहाँ आने का फ़ायदा नहीं होगा। चंद बातें जो इल्म के आदाब के लिए ज़रूरी हैं, और जब आप बैठ के किसी जगह सीखते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और यही मकसद होता है ऐसे ऐसी नशिस्तों का कि हमें इल्म लेने और देने के आदाब भी आएँ। तो घर से वक्त से पहले निकलें, सुबह उठ के नफिल पढ़ के दो निकलें कि अल्लाह हम इल्म के रास्ते में जा रहे हैं, इसको कबूल करना। हदीस में आता है कि जो तलबे इल्म की खातिर घर से निकलता है तो जब तक वापस ना आ जाए, अगर उसको मौत भी आ गई तो वो शहादत की मौत है। तो आपका मेरा इस वक्त यहाँ बैठना बहुत सिक्योर है, मौत आती है तो आ जाए फिर, बस अल्लाह राज़ी हो हमसे, क्योंकि इल्म का रास्ता है और अल्लाह हमारी नीयतों को इखलास अदा करें। दूसरी बात है कि सुबह शावर लेकर फ्रेश अप होकर आएँ ताकि यहाँ आकर नींद और सुस्ती का असर ना हो। फिर अगली चीज़ ये है कि हल्का फुल्का सा नाश्ता करके आएँ, क्योंकि जब खाली पेट आते हैं तो यहाँ आकर फिर एकदम भूख का एहसास होगा, बहुत भारी खाना खाकर आएंगे तो सो जाएंगे। और दूसरी अगली बात यह है कि अल्लाह ताला से ये कहें कि अल्लाह मेरा ये निकलना, मेरा जन्नत की तरफ निकलना बना दे, और वक्त से पहले यहाँ आकर बैठकर अपना काम शुरू कर दें, और जो आ रहे हैं उनको आने देंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे सिर्फ ये चंद दिन में इस किताब के साथ आप अपने अंदर एक अजीब सी चेंज देखेंगे, एक नई शख्सियत उभरती है। इल्म कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये दुनिया की बहुत बड़ी दौलत है। तो लिहाजा इस वक्त इस मौजू को हम कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए जी एक और चीज़ जो है हमारी सिस्टर के जरिए हमें याद आ गई कि सब अपने फ़ोन्स बंद कर दें, या आप देख रहे थे कि शुरू में जो टेक्निकल चीज़ें थी ये सिर्फ इसलिए हो रही होती हैं कि हम आपकी इस बात को रिकॉर्ड कर सकें ताकि आपका सदका जारिया बने, और इंशाल्लाह ये बुक, ये मौजू जहाँ भी आप लोग सुनेंगे ये फ्रांस वालों का सदका जारिया होगा। तो मैं याद दहानी के लिए भी कह दूंगी कि ये कोर्स हम लोग आज 26 दिसंबर 26 दिसंबर 2016 में शुरू कर रहे हैं, और हम इस वक्त फ्रांस में, फ्रांस के शहर पेरिस में। और बस आगे वाला एड्रेस ना ही बताएं, लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन यह कि ये मस्जिद फलाहे दारैन, क्या नाम है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि फलाहे दारैन का ही सबब बना दे हमारे इस पढ़ने और पढ़ाने को। जो भी लोग जब भी इस बुक को सुनेंगे, और मेरे गुमान के मुताबिक इसको हजारों नहीं लाखों लोग बाद में सुनेंगे, और जिंदगी रहेगी जब तक ये सदका जारिया रहेगा, तो आप सब इसका हिस्सा हैं। पहले तो दिल की गहराई से इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। लोग सोचते हैं जो बोल रहा होता है वो पढ़ाता है, हालांकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो सुन रहे होते हैं वो पढ़वा रहे होते हैं। आपका डेडिकेशन, आपका फोकस, आपके चेहरे पे इल्म की तलब, आपके चेहरे की आजजी, आपके फेस एक्सप्रेशन मुझे बोलने में मददगार होंगे। तो लिहाजा जितना सेंसिटिव काम मेरा है उतना ही आपका है। तो सेलफोन्स यहाँ हाथ में खोलना कोई ज़रूरत भी नहीं, फ़ायदा भी नहीं। और 2 घंटे की तो सारी ये एक नशिस्त है, मुझे तो ये बहुत छोटी लग रही है, लेकिन आपके लिए भी ये भी बड़ी होगी। लेकिन इसलिए बेहतर है कि फ़ोन्स को बंद करके अंदर रख दें बैग में। रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे हम आपकी एक एक लफ्ज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप जाएंगे तो कोर्स की ये क्लास के फौरन बाद भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पूरा डेडिकेशन रखें, जिस मेहनत से ये सब कुछ हुआ है ये आप भी जानते हैं और मैं भी देख रही हूँ। ये आसान नहीं होते ये ट्रिप्स फाइनल करना, ये तो पता नहीं किस किस का रात दिन का खून पसीना निचोड़ता है फिर ये कुछ होता है। तो ये ना हो कि हम सब कुछ करके अब यहाँ आकर तो इधर उधर देखने लग जाएं। तो इस वक्त इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी डेडिकेशन होगी। थोड़ा सा बुक का इंट्रोडक्शन करवा दूँ, वैसे तो मैं आपको अपने पास से भी इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें कोट करवाऊंगी जो भी आपके नसीब में होगा, लेकिन हम इस बुक को फॉलो करेंगे इस कोर्स में एज अ टूल। तरतीब के एतबार से बहुत खूबसूरत तरीके से इसमें मुसीबतों से मुतल्लिक चीज़ें, शुरू में इंट्रो के लिए ये सब बोल दूं ताकि सिर्फ ये चंद बातें सुनकर भी साथियों का सुनने को शौक आए, और हो सकता है कोई ये सोचे कि मैंने एक ही दिन आना है तो वो हर दिन आना चाहे, और तरतीब होगी। तो ये किताब जो है इसका नाम है मुसीबतों से कैसे निमटें। अगर आप बुक अगर आपके हाथ में हो तो आप देख सकते हैं दारुन नूर की छपी हुई है, प्रोफेसर डॉक्टर फजल इलाही साहब की। इस पूरी बुक में इन 4 सवालों का जवाब है, और यही 4 सवाल मैंने हर दिन एक एक आपको जवाब दे के जाना है इंशाल्लाह ताला। इसमें पहली बात है कि ये राइटर आप सबके लिए नोन है, कुरान और सुन्नत, किसी मसलक, किसी सोच, किसी फिक्र, किसी दूसरे नाम के साथ ऐसी कोई बात इस किताब में नहीं होगी। टॉपिक भी बड़ा आम है, इसमें ना तो कोई फिक्ही इख्तलाफात हैं और ना कोई अकीदे की उलझने हैं। ये सादा सा एक सवाल है कि हम पे मुसीबतें आती क्यों हैं। हर दौर में लोगों ने इसका सवाल किया। अलामा इकबाल का तो मारूफ शेर भी आपको याद हो चुका होगा अब तक सुन सुन के, कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। तो इस किताब के अंदर वो सारे असबाब होंगे कि ये बेचारे मुसलमानों पे मुसीबतें क्यों टूटती हैं और मुझ बिचारी पे क्यों टूटती हैं। क्योंकि मुसीबतें जो होती हैं ना ये 2 तरह की होती हैं, एक इनफिरादी और एक इज्तमाई। एक हम पे वन बाय वन अपनी ज़ाती ज़िंदगी की तकलीफ़ें आती हैं, मसलन आज किसी मेरे अजीज़ का इंतकाल हो गया तो कल आपके किसी का हो सकता है, आज मैं बीमार हूँ तो कल कोई और हो सकता है। और एक वो इज्तमाई मुसीबतें होती हैं जो हमें इस वक्त चारों तरफ दुनिया में मुसलमानों पर दिखती हैं। इंशाल्लाह इस किताब में हम 4 मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक ये कि मुसीबतें क्यों आती हैं, और आज का हमारा टॉपिक ये और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। 2 बहुत बड़े रीजंस होंगे, और आज के इस टॉपिक में यानी फर्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि जो मुसीबत आती है क्या वो कोई आजमाइश है या मेरे गुनाहों की सजा है। हम में से अक्सर लोग इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाते कि ये मुश्किल मुझ पे किसी सजा के तौर पे आई है, और मैंने सजा पे के तौर पे आई तो क्या की है कि मुझ पे आ गई। और दूसरी सूरज यह है कि फिर नेक नेक लोगों पे क्यों आती है अगर तकलीफें। तो इंशाल्लाह ये पहला मेन टॉपिक इसका ये होगा। फिर दूसरा इस का टॉपिक हमारा होगा कि मुसीबतों के आने से पहले क्या करें। देखिए इस्लाम का मिजाज है ना प्रिवेंटेशन का है। प्रिवेंटेशन समझते हैं, पहले से बचाव कर लो। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाती हूँ कि कोई एक ऐसी जगह है कि जहाँ पहाड़ी है और उसके साथ खाई भी है, जगह बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। तो एक मुल्क ऐसा है कि जिसकी गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम इधर एक हॉस्पिटल बना लेते हैं, एक एम्बुलेंस खड़ी कर देते हैं, साथ ही एक स्पेशलिस्ट को बुला लेते हैं जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। क्यों? ताकि जो ही कोई इधर पहाड़ी से उतरते हुए नीचे गिरे, खाई में गिरे, तो उसको एम्बुलेंस में डाला जाए, हॉस्पिटल में भेजा जाए और वहाँ वो स्पेशलिस्ट उसकी हड्डी को जोड़ दे। हम सब इसको बहुत अच्छा कहेंगे क्योंकि वेल प्लान्ड, वक्त से पहले वहां हर चीज मौजूद है। कोई बीमार होता है, फौरन एम्बुलेंस आ जाती है, फौरन उसको हाथों हाथ लेते हैं और टेक केयर करते हैं। बजाहर देखने में ये स्टाइल हमें बड़ा खूबसूरत लगता है और वेस्ट में हमें इसकी झलक दिखती है कि हर चीज के लिए उन्होंने इंतजाम किए होते हैं कि जब ये होगा तो ये होगा, जब बच्चे माँ बाप से बेजार हो जाएंगे तो उनको ओल्ड होम्स में डालेंगे, और अगर बच्चे माँ बाप की आज़ादी में रुकावट है तो हम चाइल्ड केयर सेंटर बना लेते हैं। लेकिन एक दूसरी हुकूमत है वो कहती है कि सोचो हम यहाँ एम्बुलेंस खड़ी करें, हॉस्पिटल बनाएं और हम इधर एक डॉक्टर को बनाकर बिठाएं, बहुत रिसोर्सेज चाहिए, क्यों ना हम इस घड़े को ही बंद कर दें। वो जगह जहाँ से किसी के गिरने का खतरा है, स्लिपरी है या कुछ भी है, हम इस फैक्टर को ख़त्म कर दें ताकि लोग गिरे ही ना। अब ना वहाँ आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत रहेगी, ना हॉस्पिटल की रहेगी, ना डॉक्टर्स की रहेगी। ये है तरीका प्रिवेंशन का, ये है इस्लाम का मिजाज कि घर टूटे ही ना कि क्राइसिस सेंटर में बेटियों को जाना पड़े। पहले ही वो मैयर लिए जाए, वो सारे असबाब इस्तेमाल किए जाए कि बेटियां घर बनाने वाली हों और मर्द घर बसाने वाले हों। बात समझ गए हैं? तो यहाँ इसमें हम एक पूरा टॉपिक ये सीखेंगे जिसके अंदर फिर तकरीबन 18 पॉइंट्स है कि मुसीबतें आने से पहले क्या करें। ठीक है, फिर तीसरा इसका मेन टॉपिक हमारा होगा कि मुसीबत आ गई हमारी कोशिश के बावजूद, बचाव के बावजूद फिर भी आ जाती है। आप घर पूरा लॉक करके सोते हैं, चोर फिर भी आ जाता है। आप पूरी केयर करते हैं फिर भी गर्मी सर्दी लग जाती है, फिर भी आप बीमार हो जाते हैं ना, ये अल्लाह का हुक्म है। तो जब आए तो फिर क्या करें, ये काफी तवील टॉपिक है। और उसके बाद ये है कि जब मुसीबत खत्म हो जाए, ये आखिरी चीज है जिसको बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि आई थी मुसीबत, अल्लाह के हुक्म से टल गई, अब उसके बाद क्या करें। बाज़ लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं, बड़े बड़े सदमों से बचते हैं, लेकिन चंद दिन के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि पहले थे। तो आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक में हम बहुत कुछ देखेंगे और अल्लाह ताला से ये दुआ भी करेंगे कि वो हम सबको बेहतरीन तरीके से इस मौजू से फ़ायदा उठाने वाला बनाए। और इंशाअल्लाह ताला जब हम इल्म की रोशनी में, और इस किताब में आपको कुछ हदीसें और टॉपिक मिलेंगे, आप लोगों के पढ़ने का तरीका क्या कि आप मेरी बात सुने जैसे मैं बोल रही हूँ, और आप इन छोटी छोटी बातों को नोट करें। जहाँ कोई हदीस आयत आएगी वो आपके लिए इस बुक में लिखी हुई है, जिनके पास बुक है उनको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ रेफरेंस दे दें। बुक खोली होगी तो उस जगह को हाईलाइट कर लें। बस आप देखिए जैसे मेरे सामने भी किताब है, तो अगर इसमें कोई चीज मैंने आपसे शेयर करनी है ना, तो मैंने उसको हल्का सा हाईलाइट किया हुआ है। एक एक लफ्ज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसके अंदर से वो चीजें जो आपके मेरे लिए फायदे की होंगी। तो हकीकत यह है कि ये जिंदगी मुसीबतों से खाली नहीं है, एक मुश्किल से हम बचते हैं तो दूसरी मुश्किल में पड़ना पड़ता है। तो आइए हम इस बुक के पेज 39 पे जो इंट्रो है उसमें से चंद चीज़ों को लेके शुरू करते हैं, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुसीबतों से कैसे निपटे, हम यहाँ इसके शुरू के इंट्रो को अगर देखें तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिलाशुबा ज़िंदगी मुसीबतों से खाली नहीं, एक मुसीबत से छुटकारा नहीं होता कि दूसरी आ पहुंचती है। अल्लाह ताला का इस दुनिया में यही दस्तूर है। वही इलाही से खबर देने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को सदियों पहले बहुत वाज़े बयान अंदाज में बयान किया था। अब हदीस है आपके सामने लिखी हुई, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इमाम बुखारी ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हों से रिवायत नकल की है, उन्होंने फरमाया। अब इसके लिए ना आपको अपना इमेजिनेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा, अगर यहाँ व्हाइट बोर्ड होता तो मैं आप में से किसी से कहती कि आप इसका फिगर बनाकर दिखाएं, लेकिन आप सब अपने नोट्स में एक छोटा सा पेपर लेकर उस पर यह बनाएंगे तो इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगी ये मिसाल। और ये नबी सल्लम की टीचिंग टेक्निक यानी आपके तालीम देने की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है कि आप फिगर्स और पिक्चर्स के साथ सिखाते थे। पिक्चर समझते हैं यानी माइंड मैप्स, आज के दौर में इसका बड़ा रिवाज है कि माइंड मैप क्या है, उधर से ये क्या है। तो अल्लाह के नबी ने क्या किया, आपने एक मुरब्बा शक्ल खींची। मुरब्बा किसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर, यानी दो ऐसे लंबे और दो छोटे एजिस करके तो एक चौकटा सा बना दिया, और एक लकीर इस शक्ल से बाहर निकलती हुई खींची, यानी मिडल में एक नुक्ता लगाकर उधर से एक लकीर खींची और उसकी दीवार से वो बाहर गई। तसव्वुर में आ रहा है, आप बना लीजिए साथ सुनते हुए निशान बना के देखिएगा। इस दरमियानी लकीर की जानिब जाती हुई छोटी छोटी लकीरें लगाईं, फिर फरमाया। अब आप देखें कि जब कोई चीज़ आप जाहिर करके इस तरह बताते हैं तो उससे सुनने वाले का माइंड कितना क्लियर होता है। आपने फरमाया ये इंसान है, क्या ये जो मुरब्बा है। अब आप लिखें अपने पास जो रेक्टेंगुलर आपने बनाया उसके साइड पे डाउन एरो डालिए और लिखिए ये इंसान है, यानी ये इंसान की जिंदगी है जो इस चकोर दर्जे के अंदर है। ये इसकी मौत हर जानिब से इसका अहाता किए हुए है, यानी ये जो चार चौकटे की जो चार लाइनें हैं ना, ये आपका मेरा लाइफ स्पैम है। जिस दिन मेरी ज़िंदगी का ख़त इस लाइन से टच करेगा ये मेरी मौत होगी, ठीक है। यानी मुरब्बा शक्ल या करीब करीब इखाता कर चुकी है और ये लकीर जो इस मुरब्बा शक्ल से निकल रही है, एक ख़त ऐसा है कि वो लकीर को क्रॉस करके बाहर जा रहा है, ऐसे मिडल से करें। आपने फरमाया ये इंसान की उम्मीद है, यानी हम मर जाते हैं हमारी उम्मीदें नहीं मरती, सच है कि नहीं। वो कहते हैं ना कि समान 100 बरस का पल की खबर नहीं है इंसान, वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। तो जब इंसान मर जाता है उसकी उम्मीदें जो हैं वो रहती हैं। फिर उस चौकटे के अंदर आपने यूं इस तरह छोटी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगाई, फरमाया ये छोटी छोटी लकीरें मुसीबतें हैं। अगर यानी एक मुसीबत इससे चूक जाती है, यानी हम एक से बचते हैं तो दूसरी आ पहुंचती है, और अगर ये इससे चूक जाती है तो ये तीसरी मुसीबत इसमें आ जाती है, क्या ये सच नहीं है। मैं इसको कैसे सोचती हूँ, जैसे अभी हम लोग सफ़र करके आए ना, आज तो आपको बहुत ही रश खाली खाली सड़कें मिली होंगी, सिर्फ आप ही लोग निकले हैं, बाकी तो आज क्रिसमस की पार्टी मनाकर सो रहे होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन आज सड़कों पे बिल्कुल रश नहीं था। लेकिन अगर कभी आप रोड पे गाड़ी चलाने के दौरान देखें, अभी एक गाड़ी से आप बचते हैं तो आगे दूसरी आ जाती है, फिर राउंड अबाउट है तो चारों तरफ से आती हैं। बस आप जिस तरह ड्राइविंग करते हुए चारों तरफ से बचते हुए आए हैं ना, यही ज़िंदगी का सफ़र है। अगर मैं और आप ये कहें कि हमें कोई तकलीफ आए ना, ये नहीं होगा। लिख लें, आपके बच्चों को कोई तकलीफ ना आए, ये नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं जितनी मर्जी हों, वो काबे के ख़िलाफ़ को थाम कर भी अपने बच्चों के लिए दुआ करें ना कि अल्लाह मेरे बच्चे नू तत्ती हवा ना लगे, कहती हैं ना माएँ, वो तत्ती भी लगनी है वो ठंडी भी लगनी है, कि अल्लाह मेरे बच्चे को गर्म हवा ना लगे, फिर भी लगेगी। दुआएं कबूल नहीं होती सारी, क्यों? अल्लाह ताला की सुन्नत है ये, कभी बीमारी, कभी हादसा, कभी मुसीबत, कभी तंग दस्ती, कभी परेशानी, कभी एक हमारा दिल दुखा देता है, कभी हम किसी का दुखा देते हैं, और बाज़ दफ़ा तो चारों तरफ से ताबक तोड़ हमले होते हैं। आम हालात में हम बड़े आराम से रहते हैं, हम कहते हैं सो के मौसम, अच्छा मुसीबत आएगी ना। मिसाल है कि जैसे आजकल आप किसी की आवाज़ भारी देखें, सबसे पहला कमेंट हम क्या देंगे, मौसम बदल रहा है ना, वो सूखी हवा चल रही है ना, वो गीली हवा चल गई ना। अमूमन देखिए कि हम पे जो मुश्किलात आती है ना, हम उसकी कोई लॉजिक दे देते हैं। मतलब बच्चा रो रहा है ना, तो वो इसकी नींद नहीं ना पूरी हुई, ये नहीं माँ सोचेगी कि ये बच्चा रो रहा है ये मेरे किसी गुनाह की सजा हो सकती है, या अल्लाह मेरे दर्जे बुलंद कर रहा है कि मेरा बच्चा रोए और मैं उस पर सब्र करूँ। हमेशा लोग बहुत जल्दी जजमेंटल होते हुए, राय जनी करते हुए मुसीबतों को किसी सबब से जोड़ देते हैं। वो असल में रात नींद सही नहीं आई ना, तो आज सर में दर्द हो रहा है, नहीं ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई सबब अल्लाह ने नहीं बताया। तो जब कोई मुसीबतें आती हैं तो ये हमें जगाने के लिए आती हैं। देखिए जब कोई जिस्म का हिस्सा काम करना छोड़ देता है ना, तो डॉक्टर्स उसको बिजली के झटके देते हैं। पहले दौर में आपने सुना होगा बिजली के झटके दिलवाने, इलेक्ट्रिक शॉक्स देने, आजकल उसको आप अल्ट्रा रेसिस कह सकते हैं, आप उसको कीमोथेरेपी करा सकते हैं। कैंसर के मरीज के एंड पे जो कीमोथेरेपी की जाती है वो क्या होता है, उसको बिजली दी जाती है। हम जब ज़रा से छोटे थे तो हमने सुना हुआ था कि जब कोई कैंसर का मरीज़ जब कोई कैंसर से मुतासिर होता है तो उसको सांप का जहर देते हैं, यानी कीमोथेरेपी को उस दौर में लोग कहते थे कि ये पॉइजन होता है, तो मरीज़ के जिस्म में इंजेक्शन के जरिए से दिया जाता है, जो जाके फिर कैंसर के सेल्स जो उसको जलाता है या उससे डिस्ट्रॉय करता है। दुनिया में जब कोई जिस्म का हिस्सा काम करना छोड़ता है, तब उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं ताकि वो काम करना शुरू कर दे, ऐसी है ना। या किसी का दिल काम करना छोड़े तो डॉक्टर्स उसको पंप करते हैं ना जोर से, या किसी का सांस सूखे तो उसके लंग्स को प्रेस करके झटके दिए जाते हैं ना। ये जो झटके हैं ना, ये जिंदगी है, लिख लें, ये जिंदगी के झटके, जिसको मैं और आप कभी मुसीबत कहते हैं, कभी परेशानी कहते हैं, कभी दुख कहते हैं, ये हमारे सोए हुए जमीर को जगाने के लिए आते हैं। होश करो, वेक अप, उठ जाओ, अभी वक्त है, कुछ कर लो। किसी मुसीबत में हम पड़े और उससे निकल आए, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती है। किसी बीमारी में हम पड़े, बड़ी खुशी की बात है, उससे निकल कर हम सबक सीख लें तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं। एक जुमला लिखिएगा, बुक में नहीं है, मैं आपको अपने पास से कोट करवा रही हूँ। मुसीबत इंसान की उस्ताद बन जाती है, शर्त एक है कि आप उससे सबक सीखें। आप सबक सीखने वाले हो ना, तो हर बीमारी आपका उस्ताद है, हर परेशानी आपकी उस्ताद है, हर तकलीफ, हर फक्र, औलाद का झटका, शौहर की बेरुखी, बीवी की बेवफाई, बच्ची का ठुकराया जाना, बच्चे के घर का टूट जाना, ये सब हमारे लिए झटके होते हैं। ये उस्ताद बन के आते हैं कि लोगों सबक सीख लो, लोगों सबक सीख लो। ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें होती हैं। कोई ऐसा इंसान जिसको कभी उस्ताद ना मिला हो ना, कभी देखिए उसकी जहालत, वो अपने आप को सब खरफन बोला समझेगा। वो कहेगा जब मुझे आता है वो तो किसी को आता ही नहीं है, लेकिन देखा जाए तो उसके पास ना कोई अदब होता है ना कोई मैनर होता है। इसी तरह आप देखिए कि जिनके पास मुसीबतें बहुत होती हैं और वो उनसे सबक लेते हैं ना, तो वो एक ऐसा इंसान होता है जो 10 उस्तादों से पढ़ के आया। बात समझ गया? हर मुसीबत ने उसको हाथ लगाए और उसको पॉलिश कर दिया। और उस्ताद का भी यही काम होता है ना कि वो हमारी तरबियत करता है। तालीम तो किताब भी दे देती है, तालीम तो रिकॉर्डिंग से भी मिल जाती है, लेकिन तरबियत उस्ताद के हाथ लगने से होती है। इसी तरह मुसीबतें हमारी तरबियत करती हैं, हमें अपनी बेबसी का एहसास होता है। हम सब कुछ कोशिश कर भी लें फिर भी अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, इसका एहसास होता है। फ़ालुल लिमा युरीद, जो इरादा चाहता है वो करके रखता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब बहुत बीमार थे और बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे थे, तो किसी के कान में कुछ कहा, कहा क्या हुआ? किसी ने कहा चलें आपको तबीब के पास ले जाएं। कहते मैंने तबीब को दिखा दिया। कहा अच्छा, डॉक्टर को दिखा दिया, क्या कहा उसने? कहा उसने कहा कि फ़ालुल लिमा युरीद, कि मैं तो जो चाहता हूँ वो करता हूँ। तो आप मुझे जवाब मिल गया कि अब बस मेरे जाने का वक्त आ गया। तो याद रखिएगा कि जब भी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए तो उससे सबक लीजिए। यही आपका मेरा इम्तिहान होता है, फिर आप इंशाल्लाह उस मुश्किल से निकल जाएंगे। लेकिन लोगों का हाल अमूमन तो क्या होता है कि ना, वो कहते हैं ना कि वो एक मरहल बहादुर शाह जफ़र हैं कि इनका शेर भी है ना कि जफ़र आदमी उसको ना जानिएगा जिसको दुख में खुदा ना याद रहे, जिसको सुख में खुदा की कोई बात ना। यानी दुख और सुख दो पर्चे हैं, लिख लें, सुख खुशी और गम, मुसीबत और खुशी या सेहत और बीमारी, ये इम्तिहान के दो पर्चे हैं। हर वक्त मेरी आपकी आजमाइश हो रही है, या हमें साबिर बनना है या हमें शाकिर बनना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज अबुल अमरुल मोमिन, मोमिन का मामला बहुत अजीब है, खुशी मिलती है तो शुक्र करता है और शुक्र के रास्ते जन्नत में चला जाएगा, और गम मिलता है तो सब्र करता है तो सब्र का बदला जन्नत है। जैसे आप देखिए हम इस हॉल में बैठे हुए ना, एक ये डोर हमें दिख रहा है, एक इधर का दिख रहा है। कोई चाहे तो इस डोर से भी तो आ सकता है और कोई चाहे तो इससे भी आ सकता है अगर हम इसको खोल देंगे। ऐसे ही है ना, आप सोचिए कि ये खुशी का दरवाजा है, हमारी जिंदगी में खुशियां आती हैं, शुक्र आता है। जिंदगी रही तो किसी दिन आपको खुशियों से निपटना भी सिखाऊंगी, वो सबसे मुश्किल है। मुसीबतों से निपटना बहुत आसान है, लेकिन यकीन कीजिए कि खुशियों से निपटना, ये तो हमारे कल्चर को तब कोई नहीं आता। हम तो खुशियों में अल्लाह से निपट रहे होते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह के तूने खुशी दी क्यों, अब तुझे हम उछल कूद के दिखाते हैं, तुझे नाराज़ करके दिखाएंगे। और बास लोगों का तो एटीट्यूड क्या हो गया कि नाफरमानी खुशी में नहीं करेंगे तो और कब करेंगे, शादी पे ये नहीं करेंगे तो कब करेंगे, शादी पे भाई की शादी पे ये नहीं करना तो कब करना। वो दूसरे लफ्ज़ों में हम अल्लाह को कह रहे होते हैं कि खुशी में तेरी नाफरमानी ना करें तो फिर कैसे करेंगे। तो वो बड़ा मुश्किल पर्चा होता है। खुशियों में बहुत कम लोग अल्लाह के हुक्मों पे कायम रहते हैं, लेकिन मुसीबतों में नफ्स पे परे हुए पर्दे हट जाते हैं, नफ्स के ऊपर जो एक थोड़ी सी धुन छाई होती है वो छट जाती है। इसके बावजूद भी ना मुसीबत आने पे रवैया बदलता है और ना मुसीबत के होने पे बदलता है। तो इंशाल्लाह ताला हम इस सारे टॉपिक के अंदर देखेंगे कि ये मुसीबतें जब आ जाएं तो क्या हो, क्योंकि मुसीबत के चले जाने के बाद का रवैया बहुत अहम होता है। ये भी याद रखें, ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा इंशाल्लाह इस मौजू का, जिस वक्त भी हम इसको कर पाएंगे। लेकिन आप इन सारी चीज़ों से देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम सब के लिए ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। दीन इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं सिखाता। अगर सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ही सिखाने के लिए अल्लाह के नबी आते, कोई ज़रूरत नहीं थी 23 साल की, इतने पत्थर खाने की और इतनी मुखालफतों को सहने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ आते और एक छोटा सा बुकलेट देते। आज भी अगर आप पूरे कुरान में से नमाज की आयतें जमा करें ना, तो आपको पता है कि एक छोटा सा बुकलेट बनेगा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, यही चार चीज़ें, और शहादतें। शहादतें को निकाल दें, ये बाकी जो चार रिचुअल इस्लाम के हैं, पूरे कुरान में इसके ऊपर गिनती की बात है। ये इतनी बड़ी किताब, 6,000 से ज़ायद जो आयतें हैं, ये आपको मुझे खुशी, गम, जीना, मरना, कारोबार, तिजारत, ये सब सिखाती है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसका पहला टॉपिक शुरू करते हैं। अगर बुक को अगर आप देखेंगे तो बुक के अंदर पेज नंबर 45 पे है ये टॉपिक कि मुसीबतों की आमद के असबाब। आइए थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। किताब व सुन्नत से ये बात मालूम होती है कि बंदों पर मुसीबतें दो असबाब की बुनियाद पर आती हैं। असबाब किसको कहते हैं? सबब, रीजन, वजह क्या है। पहला सबब क्या है मुसीबतों के आने का? इम्तिहान और इब्तला, यानी हम पे मुश्किलात क्यों आती हैं? अल्लाह सुबहाना ताला हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, हमारी आजमाइश करना चाहते हैं। और दूसरी जो वजह है वो क्या है? गुनाहों की सज़ा के लिए। अपने लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि अंबिया कराम और नेक लोग और जिनको भी अल्लाह ताला ने अपना क़ुर्ब अता किया, उन पे जितनी भी मुसीबतें आईं, नबियों पे सबसे ज़्यादा आईं, अभी हम हदीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, वो क्यों आईं? अल्लाह ताला उनका इम्तिहान ले रहे थे। बड़े बड़े अंबिया कराम की आजमाइशें आई थी इसमें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में डाल दिए गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल की बीमारी का शिकार हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बार बार बेटों के गम मिल रहे हैं। बेटों की जुदाई का गम छोटा गम तो नहीं होता। इसी तरह आप देखिए कि हज़रत नूह के सामने उनका बेटा दुनिया से जा रहा है। हज़रत लूत की बीवी नहीं मान रही। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई ईमान ही नहीं लेके आ रहा। तो ये मुसीबतें थी ना, तो ये पहली कैटेगरी में आती हैं मुसीबतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें आईं वो क्यों आईं? अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया था कि ये इस वक्त इस सारी मुश्किल से कैसे निबटते हैं, क्या हाल और हालात होते हैं। ठीक है, तो नेक लोगों पर जो चीज़ें आती है वो इम्तिहान और इब्तला होता है। और गुनाहगार लोग, जो लोग अल्लाह की नाफरमानियों के साथ जीते हैं, उनके लिए भी मुसीबत एक रहमत है। क्या? कि अल्लाह उनको गुनाहों से पाक करता है। अगर मुसीबत ना आए, मुश्किल ना आए, तो इंसान को अल्लाह की ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने अलबिदाया और नहाया में ये बात पढ़ी थी कि फिरौन को अल्लाह ताला ने 300 साल या 400 साल की उम्र दी, जिसमें से 300 साल तो वो हुक्मरान रहा, और इस सारे अरसे हयात के दौरान उसको एक दफ़ा भी दर्द सर भी नहीं हुआ। क्यों? कि अगर कभी उसको सर दर्द ही हो जाता ना, तो उसको पता चल जाता कि मेरे ऊपर भी कोई हस्ती है जो मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम कर रही है, और हो सकता है उसको ईमान मिल जाता। चूंकि हर चीज उसकी मर्जी से हुई, उस जो सोचता था कर लेता था, उसी ने उसको फिरौन बना दिया। याद रखिएगा, ये जिंदगी का मामला है। और आइए जरा पहली वाली किस्म को जरा डिटेल से देखते हैं कि पहला सबब क्या है कि आजमाइश के तौर पर आना। अल्लाह ताला ने सूरत अल बकरा 155 में फरमाया, वला नब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूई व नक्स मिनल अमवाली वल अनफुस वबशिर वस्समरात वनक्स मिनल अमवाली वल अनफुस वस्समराति वबशिर साबरीन। यकीनन हम तुम्हें खौफ और भूख और मालों और जानों और फलों की कमी में से किसी न किसी चीज़ के साथ ज़रूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए। आप में से मेरा ख्याल है कोई सिस्टर ऐसी नहीं होगी कि जो ये आयत ना जानती हो। बिल्कुल शुरू में ही आ जाती है दूसरे पारे के अंदर ये आयत। हम सब को क्या बताती है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आजमाइशें तो आएंगी। अगर आप एक एक चीज़ की डिस्क्रिप्शन देखें, वला नबलू वन्नकुम, अगर आयत पे गौर करें ना, वा और ला अलबत्ता, नबलू वन्नकुम, अगर मैं इस सोच से इस तरह पढ़ूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें ताकीदें हैं। नून हम, अपने लिए इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, ये भी कह सकता किया जा सकता है, बलऊ हमने आजमाया, अल्लाह ने अपनी तरफ लिया कि हम ज़रूर, या बलू वन्ना, ये जो वन्ना में नून के ऊपर शद है ना, ये शिद्दत की है, तशदीद है। यानी इस एक लफ्ज़ में वाला नबलू वन्ना कुम में इतनी ताकीदें हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं श्योरली वी विल टेस्ट यू, श्योर शॉर्ट ये होगा। और उर्दू में हम कहते हैं ज़रूर, बिल ज़रूर हम तुमको आजमाएंगे। یہ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں تمہیں آزمایا جائے گا. اور قوم سے مراد سارے مسلمان، انسان بھی. اور یاد رکھیے ایک بات بہت اہم ہے آپ کے میرے لیے، کہ دنیا میں مومن پہ آزمائشیں زیادہ آتی ہیں کافر کی نسبت. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. آپ اس سارے کو پڑھنے کے دوران آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنتیں بھی سمجھ آئیں گی. یہ جو بات وہی پہل پھر آ گئی بات کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، کیا مطلب کہ آپ عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ نان مسلم لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر مشکلیں کم آتی ہیں. رنگ تو پہلے ہی ان کا گورا ہے، کالے نہیں ہیں، ملک بھی ان کے صاف ہے اور خوبصورتی بھی وہاں زیادہ ہے اور کھانا پینا ان کا بڑا فریش ہے، ملاوٹ نہیں ہے. کبھی کبھی یہ چیزیں سوچ دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ ان سے خوش ہے تبھی تو یہ سب کچھ دے رہا ہے. تو مت سوچیے. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پاک کر، ان کو دنیا میں دینا چاہتا ہے. لکھ لیں یہ بات، مسلمان یا مومن کو اس کی نیکیوں کا اجر زیادہ آخرت میں ملے گا، کافر فاجر غیر مسلم کو اس کی نیکیوں کا سارے کا سارا اجر دنیا میں ملتا ہے. یہ جو دنیا میں ان کو اگر خوشی ملے گی یا سکون ہے، اندر کی حالت تو ہم نہیں جانتے، وہ تو آگے بات کریں گے ہم انشاءاللہ، کہ تکلیف مومن پہ بھی آتی ہے، تکلیف کافر پہ بھی آتی ہے، لیکن مومن تکلیف میں بھی خوش ہوتا ہے. کافر پہ تکلیف آئے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ قنوط کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کفار کو دنیا میں ان کی نیکیوں کا اجر دیتے ہیں. جیسے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت خوبیاں ہیں، اگر دشمن کی برائی کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ زیادتی ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، ان کے اندر انصاف ہے، ان کے ملکوں میں عدل ہے. وہ اسلام دشمنی ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ دیکھیے تو آپ غیر مسلم ملکوں کے اندر ہر چیز کو آرگنائز دیکھتے ہیں نا، سوشل ورک بھی ہے اور اگر ہیلپ بھی ہے اور لوگوں کو پوری چیریٹیز دیتے ہیں. تو کیا ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے؟ ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے. اللہ عادل ہے، وہ چاہے تو ضائع کر دے لیکن اللہ کسی کا درج عمل ضائع نہیں کرتا. اس کے برعکس جو مومن ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ سب کچھ اچھا بھلا کر کے بھی آزمائشوں میں پڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے اندر جو بشری کمزوریاں ہیں نا، ہم سب میں ہوتی ہیں. دیکھیں انسان انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گروہ تھا لوگوں کا، جو آپ کے دین کے ساتھی تھے، وہ بھی کوئی فرشتے نہیں تھے. غلطیاں ان سے ہوئیں، خطائیں ان سے ہوئیں، لغزشیں ان سے ہوئیں، لیکن دل خوبصورت تھے. تو اللہ نے ان کے لیے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ذلک لمن خشی ربا. تو اللہ تعالیٰ بندے کی جو چھوٹی بڑی باتیں ہیں نا، اس کو دور کرنے کے لیے ولنبلونکم. پھر آپ دیکھیں دوسری اگلا لفظ ہے کہ بشیئن، تھوڑا سا. شیئن کے لفظ کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ نکرہ میں ہے، ویری فیو، ویری لٹل، بہت تھوڑا سا، سم آف، یعنی زیادہ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم ازمائیں گے. من الخوف، یہ جو من ہے نا عربی زبان میں تبعیض، تبعیض کہتے ہیں بعض، سم آف، یعنی ہر وقت نہیں تمہیں ازمائیں گے لیکن کچھ وقت تو دیں گے. من الخوف والجوع، خوف آئے گا. اب خوف کس کس کا ہو سکتا ہے؟ جنگوں کا خوف، دشمنوں کا خوف. جس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھی صحابہ کرام کا، اس وقت وہ دور چل رہا تھا مدینہ میں کہ ذرا سا کھٹکا بھی ہوتا تھا تو کہتے تھے جنگ لگ گئی، ہتھیار ہتھیار کی آوازیں آتی تھی، رات کو سو نہیں پاتے تھے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، کوئی ہے جو آج کی رات میرے گھر کا پہرا دے اور میں سکون سے سو سکوں؟ تو خوف تو آتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ سچے مومن متقی اس کے باوجود ان کو دنیا میں مختلف قسم کے خوف جو ہیں وہ دکھتے ہیں، کہیں جنگوں کا خوف، کہیں انسان کے حقوق کو پامال کیے جانے کا خوف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ہوگا، خوف تو ساتھ آئے گا. پھر ولجو، بھوک، تنگی، ترشی، غربت اس میں آتی ہے. صحابہ کرام بیچاروں نے تو پیٹ بھر کے کھانا تب کھایا جب خیبر کی جنگ ہوئی اور اس کا مال غنیمت آیا. اور اگر آپ تبوک کے سفر کو پڑھ لیجئے جنگ کتابوں میں، تو ایک کھجور سارے دن میں کھاتے تھے، چوس چوس کے چوس کے اس کی گٹھلی ختم کرتے ہیں. حضرت عائشہ سے جب کسی نے یہ بات سنی کہ صرف ایک کھجور پورے دن میں ملتی تھی، تو کہا کہ گزارا کیا ہوتا تھا، وہ ایک کھجور کیا کرتی ہوگی آپ کا؟ کہنے لگی یہ ہمیں اس دن پتہ چلا جس دن وہ کھجور بھی ختم ہو گئی. چاروں ناچار اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے پیٹ کے اندر ایک تھیلی ہوتی ہے پانی کی، وہ پانی پینا پڑا، اوجریوں کے اندر کا پانی پینا پڑا، درختوں کے پتے کھانے پڑے، بیریوں کے پتے کھائے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم قضاء حاجت میں جب فارغ ہوتے تھے تو جانوروں کی طرح مینگنیاں ہمارے جسم سے نکلتی تھی، کیونکہ بکریاں بھی پتے کھاتی ہیں تو ہم نے بھی پتے ہی کھائے، تو جو ہم کھاتے تھے وہی کھاتے ہیں، تو وہی انجام ان کا تھا جو ہمارا ہوا. यानी भूख सही, मैंने आपने कहा सही, वल्लाही मैं सोचती हूँ कि आज के दौर में हमारा तो दीन का काम भी दी खाने पीने के अलावा नहीं ख़त्म होता। शादी हमारी खाने पीने से नहीं ख़त्म होती, मिलाद हमारे खाने पीने के बगैर नहीं है, ख़त्मों में हम खाते पीते हैं। कल शाम भी एक जगह थे तो मैंने उन्हें कहा कि कितना खर्चा होता है, जितना भी खर्चा हुआ खा पी के तुमने खुद ही चले जाना है, हमने ये पैसा किसी नॉन मुस्लिम के दीन तक पहुंचने का कोई जरिया बनाया, इससे इस्लाम को क्या दिया? हम तो अभी उसी स्टेज से गुजरे हैं कि खुद ही अपने ही लाड़ और नखरे देख रहे हैं, हमने खैरों पे इस्लाम पे माल कहाँ खर्च करना था। लेकिन इट्स वेरी बिग ट्रू कि अल्लाह ताला ने उस दौर में भूख सहनी पड़ी लोगों को, लोग भूखे रह रह कर काम करते थे। और याद रखिए, जितने पेट भरे होते हैं उतना ही नखरे ज़्यादा सूझते हैं, उतनी ही तनकीद ज़्यादा होती है। आज अगर हमें भी ज़रा से फाके सहने पड़े तो हम भी थोड़े से हो जाए, लेकिन बहरहाल इस्लाम के रास्ते में भूख तो आती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी नहीं जरूरी होता कि भूख लगे और आपके पास खाना नहीं है इसलिए नहीं खा रहे, वक्त ही नहीं होता। मकसद की धुन देखिए, अबू हुरैरा की भूख याद कर लीजिए, इल्म की तलब में नबी के पास वो जो सहाबे सुफा थे कह लीजिए कि उसमें शामिल किए गए। और बहुत कम लोग जानते हैं कि हजरत अबू हुरैरा इतने फेमस और इतने मशहूर सहाबी, और सबसे ज्यादा हदीसें उन्होंने रिवायत की थी। कैसे? खैबर की जंग के बाद आपको मिले, मुसलमान हो चुके थे कहीं दूर, लेकिन खैबर के मौके पे अल्लाह के नबी को मदीना में मिले। कितने साल उसके बाद अल्लाह के नबी दुनिया में रहे? सिर्फ 3 साल। और खैबर के साथ को वो खैबर फतह हुआ, 10 में अल्लाह के नबी दुनिया से जाते। सिर्फ 3 साल में अबू हुरैरा ने इल्म का इतना खजाना कैसे लिया? इल्म के मोती लिए फोकस्ड होकर, डेडिकेशन के साथ। शादी नहीं की अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में कि कहीं बीवी बच्चों के कामों में उलझ गया तो मुझे इल्म नहीं मिलेगा। और हाल ये था कि कमाने के लिए नहीं जाते थे। उनकी हदीसें अभी चंद दिन पहले मैंने वहाँ बुखारी में पढ़ाई, तो वो कहते हैं कि जब मैं कोई मसला लोगों को बताता था तो लोग कहते थे हमने तो ये बात कोई नहीं सुनी, तो फिर मैं कहता था कि हमारे अंसारी भाई तो खेतीबाड़ी में लग गए और मुहाजरीन तो बाजारों में बहुत औ करते रहे, और मैं अबू हुरैरा नबी का पल्लू थाम के उनके पीछे फिरता रहता था। खाने के लिए नहीं निकलते थे कि कहीं पीछे से अल्लाह के नबी कोई बात कह दे और मैं महरूम हो जाऊं, हालांकि वो सारी बातें उनको मिल सकती थी, लेकिन वो कहते थे हमने ब्राह रास्त सुननी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अथर से सुननी है। और हाल ये होता था कि भूख की वजह से बेहोश हो जाते थे, और कहते हैं कि लोग समझते थे कि क्या मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है, यानी जिसमें बंदे को होश नहीं आती। लेकिन मैं उस वक्त ये नहीं लोगों को कह पाता था कि लोगों मैं बीमार नहीं हूँ, मैं भूखा हूँ। और वो वाक्य आपने सुना होगा उनका, कैसे भूखे थे और बाहर निकले, आगे से हजरत उमर को आता देखा, कहने लगे मैंने सोचा कि उमर से मैं एक मसला पूछूं शायद मुंह से नहीं कह पाए कि भूखा हूं, तो सूरह दहर की एक आयत पढ़ के कहने लगे उमर इस आयत का क्या मतलब है? और उसमें लफ्ज क्या आता है, यो तेमून ताम आला हुब्बिही, कि वो अल्लाह की मोहब्बत में दूसरों को खाना खिलाते हैं। कहा हजरत उमर ने मुझे उस आयत की तफसीर करानी शुरू कर दी, वो तो मुझे सारा पहले ही आता था। यदि उमर नहीं समझ सके कि मेरा इशारा यह है कि उमर मेरे चेहरे को देखे और मुझे पूछे तुम्हें कुछ खाना है तो मैं कह दूं मैं खाना है। खैर हजरत उमर तो पढ़ा के आगे चले गए, आगे गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। आप बेहतरीन उस्ताद थे, चेहरों से पहचान लेते थे कि इस वक्त शागिर्द को क्या चाहिए और इसको किस चीज़ की तलब है। तो आपका चेहरा देखा तो कहा कि अबू हुरैरा भूखे लगते हो, आओ मेरे साथ। घर ले गए, वहां गए तो किसी ने दूध का एक प्याला तोहफे में अल्लाह के नबी को भेजा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं वल्लाही मैं इतना भूखा था कि मेरा दिल चाहे कि अल्लाह के नबी कहे कि अबू हुरैरा उठा प्याला और पी ले तो मैं सारा पी लूं। लेकिन इम्तिहान तो देखिए, और याद रखिए जो सही उस्ताद होते हैं वो इम्तिहान लेते हैं। आज तो इम्तिहान कौन ले और कौन दे वाली बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू हुरैरा जाओ सारे असहाबे सुफा को बुला कर लाओ। कहा भी अबू हुरैरा को जो पहले ही भूखे हैं। कहते मैंने सोचा ये सारे आ जाएंगे तो ये एक दूध का प्याला किसको मिलेगा, पर जरूरत नहीं थी। समय नवात आना, यही असल में साहबा की कामयाबी थी कि वो नबी की जुबान के इशारे को हुक्म समझते थे। कहा अच्छा अल्लाह के नबी, जब बुलाया 70 के करीब लोग आके बैठ गए। कहा सबको एक दायरे में बिठा दो, अब ये भी इम्तिहान है। अबू हुरैरा की नज़र तो उस प्याले पर ही थी ना कि इसमें से मुझे कितना मिलना है। फिर अबू हुरैरा का तीसरा इम्तिहान लिया, अबू हुरैरा उठाइए प्याला और सीधे हाथ से पहले साथी को पिलाना शुरू कर दें। अल्लाह अकबर, जरा सोच के देखिए, इल्म ऐसे नहीं आता। पेट भरे के साथ इल्म नहीं आता, मर्जियों के साथ इल्म नहीं आता। अपनी अपने नफ्स को मोटा कर लेने को, अपनी बात को सामने करने से बात नहीं आती। मिनल जू, ये भूख सही। अल्लाह का हुक्म देखिए, और अबू हुरैरा को जो इनाम क्या मिला कि पहले शख्स से लेकर आखिरी सारे सर्कल वालों ने दूध पी लिया, और कहते हैं कि प्याले में इतनी भी कमी नहीं हुई कि मैं कह सकूं कि किसी ने पिया। ये मुजज़ा था अल्लाह के नबी को, अल्लाह ताला ने मुझसे दिया, तो आज भी ये मुझसे मिल जाते उम्मत को अगर उम्मत में ये समावतात होती। आखिर में कहते हैं कि मैं और नबी सल्लम बच गए। फिर अल्लाह के नबी ने मुझे कहा कि अबू हुरैरा अब तुम पियो। मैंने कहा नहीं अल्लाह के नबी आप पी लें। कहा नहीं तुम पियो। कहते हैं मैंने उसको पिया। फिर वो दूध जब मैंने पिया तो मेरे जिस्म में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि प्याले में कुछ कमी नहीं हो रही। अल्लाह के नबी कहते हैं अबू हुरैरा फिर पियो। कहते हैं मैंने फिर पी लिया। फिर तीसरी दफा कहा पियो, और कहने लगे अल्लाह के नबी ने जब मुझे कहा अबू हुरैरा और पियो, तो कहा अल्लाह के नबी अब तो लगता है मेरे नाखूनों में से भी दूध टपकने लगेगा। सुभान अल्लाह, बरकत देखिए। और उसके बाद कहते हैं कि जब मैं खूब पी चुका तो सबका बचा हुआ दूध नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पिया। वला नब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूई, थोड़ा सा पेट के तकाजों से कम हो। आज हम माएँ भी हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ हैं, वल्लाह ही हमने अपनी नस्लों को खिला खिला के मोटा कर दिया। मिन्नतें तेरी करके हमने बिगाड़ दिया। आज माँ का सबसे बड़ा गम क्या है? गरम रोटी खाना। शोहर साहब क्यों नाराज़ है, क्यों नहीं पढ़ने जाने देते? नहीं रोटी गरम नहीं फिर पकती। बच्चों पे हमें सर कदम आता है, हाय बेचारे ब्रेड खा रहे हैं 2 दिन से, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी सी भूख होगी तभी तो उनको खाने की कदर होगी। जब हर रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कदर कहाँ रहती है? एक दिन फाका होगा तो फ़ायदा होगा। तो बहरहाल मैं ये नहीं कहती कि हम भूखे रखें, लेकिन कुछ भूख तो देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हर वक्त खाने पीने की फ़िक्र करना कराना ये भी इस्लाम में पसंदीदा नहीं। इससे भी इंसान जो है वो अपने असल मकसद से दूर हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए, वह नक्स मिनल अमवाल, नक्स मिनल अमवाल, मालों के अंदर कमी आएगी। ये कैसे आती है? आपको पता है कि सहाबा कराम की जायदादें थी, घर भरे पड़े थे उनके। अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको दुनिया की भी दौलत दी थी, इल्म की भी दौलत दी थी, दीन की भी दी थी, लेकिन इस्लाम के नाम पे क्या हुआ? अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम आपने कई बार सुना होगा, उनके हालात ज़िंदगी पढ़ लीजिए, हयात सहाबा के दरख्शा पहलू बुक में मैंने खुद भी पढ़ाया उनके बारे में। इतने दौलतमंद थे, लेकिन जब हिजरत करके आने लगे तो बीवी बेटा और दौलत सब लोगों ने ले ली। एक एक दावेदार आता गया, मैं ससुराल वाले आ गए, कहने लगे ये हमारी बेटी है, तुम्हें इसलिए नहीं दी थी कि इसको लेके दर दर फिरो, इसको वापस कर दो, ले लीजिए, ले गए, ख़त्म हो गई बात। फिर आगे थोड़ा गए तो बेटा अपने ही माँ बाप आ गए, कहने लगे ये पोता हमारी नस्ल है, हमें दीजिए, बेटा भी दे दिया। और निकले आगे तो भाई आ गए, कहने लगे ये माल तो मिलके कमाया, दे तुम जाते हो जाओ माल दे जाओ को पकड़ो। ये आसान है कहना, करना बहुत मुश्किल है। जब हमारे माल पे चोट पड़ती है, जब हमारे मादी वसाइल पे और हमारे जाती फायदों पे चोट पड़ती है ना, तब दीन पे कायम रहना ये सिर्फ वो बस जिस पे अल्लाह राजी हो, जिसके लिए अल्लाह आसान कर दे। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, सहाबा पे अल्लाह का ये सबसे बड़ा फजल था कि जब उनको कुर्बानियां देनी पड़ती थी, अमली तकाजे दीन के पूरे करने पड़ते थे, अल्लाह की मोहब्बत और ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ये तकाजे पूरे करने में जब अमली कुर्बानियां देनी पड़ती थी ना, वो उस वक्त जमते थे। ये फजल है, यही है सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। अभी रूहुल कुरान में अनअमत अलैहिम की पहली दफा ये तफसीर दी है लोगों को कि किसी पर अल्लाह का इनाम क्या है कि उसके लिए नेकी करना आसान हो जाए। फजर के लिए उठना आसान हो गया, आप इनाम वाले लोग हैं। इल्म के लिए घर से निकलना आसान हो गया, आप इनाम याफ्ता लोग हैं। अल्लाह के लिए माल पानी की तरह बहाना आसान हो जाए, आप इनाम वाले लोग हैं। वरना अपने नफ्स और अपनी ज़ात पे तो लोग लगाते हैं। अब्दुर्रहमान के लिए सब आसान था, हत्ता के जब मस्जिद मदीना में आए वापस तो नबी सल्लम ने कहा अब्दुर्रहमान क्या बचा कर आए? कहा अल्लाह के नबी ये तन के कपड़े। बाज कहते हैं तन पे कपड़े भी बुरे नहीं थे, और आपने कहा कि अब्दुर्रहमान तूने नफ़े का सौदा किया, कदर बेहल भई तेरी ये तिजारत तुझे फ़ायदा दे। और अल्लाह ने थोड़े ही अरसे में फिर दुनिया में माल दे भी दिया। याद रखिए कि अल्लाह के रास्ते में आपका कुछ जाता नहीं है। आप किसी इंसान पे 100 लगा दें वो 101 लगाना चाहेगा। हम इतने थोड़े दिल, हम छोटे इंसान हो के किसी का ज़रा सा एहसान नहीं रखते अपने ऊपर। कोई एक वक्त खाना खिलाए हम कहते हैं अब हम भी खिलाएंगे। कोई 1 रुपए की चीज़ देगा आप कहेंगे हम 1.25 की ज़रूर देंगे, जो दे सकते हैं वो ज़रूर देंगे, करते हैं ना। तो क्या अल्लाह रखेगा? अल्लाह कभी नहीं रखता। तो ये जो नक्स मिनल अम्वाल है, अल्लाह ताला के रास्ते में माल देने पड़ते हैं, वक्त देना, ये कभी नहीं रहता, बल्कि ये क्लॉट होता है, आगे से निकालें ताकि फ्रेश ब्लड पीछे से आए। तो ये अल्लाह के रास्तों में होगा। मुसअब बिन उमैर का नाम आपने सुना होगा कि जब मुसअब बिन उमैर की दुनिया से रुख्सती का वक्त आया तो जिस्म पे चादर भी पूरी नहीं थी। साहबा ने, अल्लाह के नबी से पूछा, साहबा ने कहा कि अगर हम मुसअब का सर छुपाते हैं तो उनके पाँव खुल जाते हैं, और पाँव छुपाते हैं तो सर खुलता है। कहा अच्छा, सर छुपा दो, पाँव पे अजहर घास डाल दो। ज़रा सोचिए, हम होते तो आज इतना बड़ा फतवा दे आते, देखो देखो कफन ही नहीं नसीब हुआ। हालांकि आपने फरमाया कि मुसअब वो जवान था कि जब खूबसूरत कपड़े पहनकर अच्छी सवारी पे निकलता था मक्का की गलियों में, तो लड़के लड़कियां उसको देखा करते थे। और एक वक्त ऐसा आया इस्लाम में कि मुसअब जब गुजरे तो जिस्म पे कपड़े को जोड़ने के लिए बटन नहीं थे, कांटों के साथ कपड़े को जोड़ा हुआ था। वल नबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफी व नक्स मिनल अम्वाल, जू, ये सब होगा। आज के मुसलमान को ये सबक दिया जा रहा है, अगर तुमने बेहतरीन कारामत नस्लें पैदा करनी है तो तुम्हें अपने बच्चों को ज़रा सा हाथ खींच के पालना पड़ेगा। हर बात पूरी करना, हर तमन्ना पूरी करना, उनकी मुंह की बात को हटाना ही ना। याद रखिए कि ये नस्लें बेकार हो जाएंगी। अल्लाह ने बनी इसराइल को 40 साल तक सहरा में डालकर सहरा नवर्दी कराई थी। वो फिरौन की गुलामी में बिगड़ चुके थे, नवाबों के गुलाम भी तो नवाब ही होते हैं ना। अल्लाह ने उनको वहाँ रखा, फिर वहाँ से एक नस्ल उठी जिसने बैतुल मक़दस को और यरूशलम को फतह किया। आज इस वक्त जो हमारा स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है, अब माजरत के साथ, माओ के साथ, लेकिन आज जो माँ बाप का स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है अमूमी तौर पे, वो ऐसी नस्लें तो नहीं पैदा होंगी जिसमें सलाहुद्दीन अयूबी और मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग आएंगे, जिनको शायद चार सहाबा के नाम भी ना आते हों, जो कभी एक वक्त भूखे ना रह सके हों, जिनके पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो लोग काम के नहीं होते। तो मुसलमानों को अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हें कुछ ना कुछ कमी तो आएगी। फिर आप देखिए, वल अनफुस, जाने भी जाती हैं। सहाबा को कितनी चोटें पड़ी, बिलाल ने अपने बदन पे मार खाई, कोयलों पे लिटाए गए। खबाब बिन अरत किस तरह से अपने जिस्म पर इस तरह की तकलीफ़ों के निशान दिखाया करते थे कि जो चीज़ें उनके लिए कल बाद में एक ज़रबुल मिसल चीज़ बन गई। ये जानों के माल होंगे। आज हमारा हाल क्या है कि हम तो इस्लाम की वजह से ज़रा सी बात नहीं सुन सकते। हमें तो अपने ही कह देना कि ये मौलवी लग रहे हो, और ये बहुत ही दर्स वाली लग रही हो, और स्काफ पहन के तुम उम्र से बड़ी लग रही हो, तो हम छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। हम कहते हैं छोड़ो छोड़ो, वैसे ठीक है, नमाजें हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर हमें कोई इस्लाम की वजह से रिजेक्ट कर दे या आउटकास्ट कर दे तो फिर हम नहीं बचेंगे। तो याद रखिए कि ये बात हमारे मुसलमानों को याद रखनी चाहिए कि इस्लाम अपनी कीमत लेता है। दुनिया में आजमाइशें आएंगी तो होगा, और वह समरात, फलों में भी कमी होगी। इसकी मिसाल तो गज़वा तबूक में देखिए, खड़ी फसलें तैयार थी, सारे साल की मेहनत हाथ में आ जानी थी अगर सहाबा निकल पड़ते, लेकिन निकले। ये नहीं कहा कि अभी ठहर जाएं। आप देखिए कि जिन्होंने भी आप में से सूरत तौबा पढ़ी है, उनको गज़वा तबूक अच्छी तरह याद होगी। अल्लाह के नबी का सरासर अपना फैसला था कि हम निकलेंगे। खैरकल आ नहीं गया था, सिर्फ धमकियां दे रहा था कि मैं आ जाऊंगा। कहा तुम कब आओगे, हम आते हैं तुम्हारे पास। सहाबा 10 मशवरे दे सकते थे नबी सल्लम को, जरा तो ठहर जाएं, 2 माह तो ठहर जाएं, जरा फसल काट के साल का गल्ला अनाज तो डाल लें। खामोश, समय न बताना। और कितना डांट और कितना एताब नाजिल हुआ है, सूरह तौबा पढ़ के देख लीजिए। मालकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाह, तुम्हें हो क्या गया है जब तुम्हें अल्लाह के रस्तों में निकलने का हुक्म दिया जाता है। साकल्तु मिनल अर्दी, तुम्हारे पांव जमीन से जुड़ जाते हैं। असल बात यह क्या, रदी तुम बिल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी में रीज गए हो, वरना अल्लाह का सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो नहीं निकलते तो ना निकलो, इल्ला अन तनफिरू, अल्लाह एक और कौम को ले आएगा। तो याद रखिए, ये एक आयत जो है ना, ये नबी के पूरी जिंदगी के खुलासे की आयत है। तकलीफ़ें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, आज हमें भी आ रही हैं, लेकिन हमें इसमें अपने आप को चेक करना है कि हमारी गलती क्या है। हम हर वक्त तस्वीरें शेयर करने को तैयार हैं, वहाँ मुसलमानों पर ये मुसीबत टूट रही है, वहाँ ये हो रहा है। पहले तो दर्द मंदी से करते थे, अब तो कहते देखो देखो मैंने सबसे पहले मैसेज दिया है, लेकिन ये नहीं सोचते कि इन सारी चीज़ों के बाद होता क्या है। अल्लाह सुबहान तआला ये सब कुछ क्यों करते हैं, बशर साबरीन, तकलीफ़ें दिखाकर, आजमाइशों में डालकर اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ کون جمتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ اب ہم اس بات کو آج پڑھ رہے ہیں نا کہ انسان پر پہلی قسم کی جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے. آج ہم مسلمان ہیں, ہمیں اگر ہم مسلمانوں کے حالات پہ گائیڈ لائن نہ لیں تو میرا لئے یہ موضوع مختصر رہے گا. بس آج آپ دیکھیے کہ جہاں بات ہوگی اینٹی اسلام بات ہوگی. دنیا میں کتنے مذہب ہیں, ہزاروں مذہب ہیں. کبھی آپ نے ان کی خبریں سنی؟ ایک مسلمان گھر کے کمرے میں بیٹھ کر بیوی کو مارتا ہے تو پتہ نہیں وہ کہاں سے خبر جو ہے وہ فیس بک پہ پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے بی بی سی پہ چلی جاتی ہے. اور جو عورتیں ہو سکتا ہے کہ کئی شرابی ویسٹ میں اپنی بیویوں کو مار کوٹ کے سوتے ہیں اس کی خبر کون دیتا ہے؟ وہاں ایک شخص مارا جاتا ہے تو ساری انٹیلیجنسز ہر لائن میں آ جاتی ہیں اور اپنے دوسروں کی بڑی بڑی باتیں نہیں پتہ چلتی. یہ سب آزمائش ہے. آج میری آپ کی آزمائش ہے, اور میں پھر آپ کو کہوں گی کہ ہمیں حق بات کرنی ہے. ہم دنیا کے جس خطے میں بیٹھے ہیں, آپ اگر یہاں ہیں, میں کسی اور ملک میں ہوں, اور اس وقت میرے حال سینکڑوں لوگ باہر سے سن رہے ہیں جو دوسری کے مختلف جگہوں میں, آپ دنیا میں جس ملک میں بھی رہتے ہیں, اور اگر آپ وہاں کے ایک اچھے شہری ہیں, آپ ایک اسلام کا بہترین نمونہ بن کے جیتے ہیں, آپ اپنے اسلام پہ عمل کرتے ہیں, وہ لوگ کبھی آپ کو ٹارچر نہیں کریں گے. کیونکہ اسلام کسی غیر مسلم پہ بھی ظلم اور زیادتی کا سبق نہیں دیتا. ٹیکس نہیں چوری کرنا, جھوٹی ایڈ نہیں لینی, ایک ایک نے چار چار شادیاں کر کے لڑکیوں کو ملکوں میں نہیں بلانا. اس کے بعد اگر ہمیں اسلام کے نام پہ کسی ملک پہ کوئی پابندی لگتی ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے, داڑھی نہیں رکھ سکتے, پردہ نہیں کر سکتے, تو اس آیت کو آج سے یاد کیجیے, والا نب لون نقم بشیئ من الخوف. سچائی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر یقین رکھتے ہوئے, یہ ملک یہ دنیا اللہ کا ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ایگریشن سے بچے بغیر, ریئیکشن نہیں شو کرنا, نعرے نہیں لگانے, مرد آباد نہیں کہنا, اپنا کام کرتے جائیں. میں سوچتی ہوں یہ گز کا ٹکڑا آج ہم مسلمانوں کے لیے آزمائش بنی پڑی ہے. کبھی ہم مسلمان اس مصیبت کو مصیبت کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے اوپر یہ اب بینس لگنے لگ گئے کہ آپ پردہ نہیں کر سکتے, آپ نقاب نہیں کر سکتے, آپ دیکھیے ایک عورت ہے اس کی ٹانگیں کھلی ہیں, کیا یہ ڈسٹرکشن نہیں ہوتی بہرحالوں کو؟ بڑے بڑے بل بورڈ میں جو تصویریں لگتی ہیں, کیا یہ آپ کے ملک کے اندر گندگی اور پولیوشن نہیں پیدا کرتی؟ اور اگر ایک عورت با حیا لباس پہن کر باہر نکلتی اور وہ کچھ نہیں آپ کو کہتی, اس نے آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا, وہ آنکھیں اس کی کھلی ہیں, کان بھی کھلے, کیا اس کا یہ تھوڑا سا معاملہ آپ کو تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ یہ آزمائش ہے, یہ آپ کی آزمائش ہے. میں آپ سب کو دل کھول کے, اور اگر میں نے یہ بات نہ کہی تو میں نے حق نہیں ادا کیا یہاں آنے کا. میں آپ کو لوریاں دے کے چلی جاؤں اور فضائل اور اعمال اور ایسی ایسی خوبیاں اور جنت کی خوشبوئیں دکھا کے چلی جاؤں, میں کل اللہ کیا مجرم ہوں گی؟ آپ کے ملک میں جس چیز پہ پابندی ہے, یہ آپ کی آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْجُوعِ. کیوں؟ کہ آپ اپنے دین پر کتنا قائم رہتے ہیں. کیا ہم چھوڑ دیں گے غیروں کے لیے؟ اگلے تک پہنچیے, آپ پلیٹ فارمز بنائیے, آپ بڑے بڑے فورمز میں جائیے, آپ کے بڑے لکھے بچے ہیں, آپ کے ہسبینڈز ہیں, جہاں تک آپ اپنے مسلم رائٹس ریلیجس رائٹ پہ لے جا سکتے ہیں, ان عدل سے بات کریں, اسمائلی فیسز سے بات کریں. غصے کی بات نہیں ہے, چڑنے کی بات نہیں ہے, نیگیٹیوٹی کی بات نہیں ہے, بی پازیٹیو. آپ کہتے ہیں بی پازیٹیو, بلڈ جو ہوتا ہے وہ سب کو لگتا ہے. اگر ہم مسلمان اس وقت پازیٹیو ایٹیچیوڈ کریں, واللہ ہی دنیا کی کوئی مملکت آپ کے میرے اوپر پابندی نہیں لگا سکتی. امریکہ میں تو اتنی سختی ہے اس بات پہ, کسی کے ریلیجس حق کو اگر کوئی دبا دے اس کو جیل میں ڈال دیں گے. مثلا ایک مرد ہے, نماز پڑھتا ہے, مسلمان ہے, اس کی جمعہ کی نماز ہے, اور اس کے جاب والا جو اس کا شیف کہہ لیجئے یا جو بھی باس ہوتا ہے, اگر اس کو جمعہ کے لیے جانے کی اجازت نہیں دیتا تو وہ امپلائی جو ہے وہ اس اپنے باس کو کورٹ میں لے کے جا سکتا ہے, اور جیتے گا کون؟ مسلم جیتے گا. وائی؟ دس از مائی ریلیجس رائٹ. فریڈم آف ریلیجن پوری دنیا کا سلوگن ہے آج. آج کرٹسی کا دور ہے. میں کہتی ہوں وہ تو گزر گئے فرعونیت کے دور اور نمرودیت کے دور, کہ جہاں وہ بگار بنا کر آپ کو بڑے بڑے مشکل کاموں میں ڈالتے تھے. آج بہت کرٹسی ہے, یہ نائس لوگ ہیں, یہ انڈرسٹینڈنگ لوگ ہیں. لیکن ہو کیوں نہیں رہا؟ ہمیں, ہم مسلمانوں کو سزا مل رہی ہے. یہ ہماری آزمائش ہے. ہم نے اللہ کے ساتھ خیانتیں کی, اللہ نے ہم پہ لوگوں کو مسلط کر دیا. تو نہ ڈرنا ہے اور نہ ڈرانا ہے, کام وہ کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے, نہ کسی کو آپ نے خوفزدہ کرنا ہے. ہاں بھائی, اٹس فائن, ٹھیک ہے, اٹس اوکے. تو بہرحال آپ کو مجھے لگتا ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہے. اس آزمائش کو کیسے پورا کریں گے؟ اللہ کے حکم پر عمل کر کے. और अपना बाकी मामलात में अल्लाह से रवैया देखिए। मसलन आपको नमाज पढ़ने पे तो कोई नहीं रोकता, तो एक लड़की है मिसाल है वो नमाज ही नहीं पढ़ती, तो फिर अल्लाह ने सजा दिलाई ना, अब तुम नमाज नहीं पढ़ती लेकिन मैं अब तुम्हें हिजाब भी नहीं करने दूंगा, तुम अपनी नमाजें ठीक कर लो मैं हिजाब की पाबंदियां उठवा दूंगा। समझ गए ना, असल तो पीछे अल्लाह का हाथ है। तो अपना अल्लाह ताला के साथ मामला दुरुस्त करते जाएंगे, इंशाल्लाह बात दुरुस्त हो जाएगी। फिर आप देखिए कि इस आयत के बाद एक और आयत इसी मौजू की दलील में नोट कर ले, आपके लिखी हुई है किताब में, सूरत अनकबूत की पहली 3 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन नास युतरकु, क्या लोगों ने ये गुमान किया कि वो छोड़ दिए जाएंगे, अल्लाह विल लेट देम गो, कि अल्लाह ताला उनकी टेक केयर नहीं करेगा। किस बात पे, अई यकूलु आमन्ना, सिर्फ मुंह से कह दिया कि हम ईमान ले आए, क्या मतलब है जी? उसी बुक में है 48 नेक्स्ट पेज है उससे। आप देखिए कि क्या अल्लाह ताला लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पे बस छोड़ देंगे, वहुम ला युफ्तनून, और क्या उनकी आजमाइश नहीं होगी? अल्लाह ताला यहाँ इस आयत में आपको मुझे सिखा रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी कीमत वसूल करवाता है। देखिए ये वो कलमा था जिसने 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में रोड़े अटकवाए, ये वो कलमा था जिसकी कीमत पे सहाबा को टॉर्चर मिले। तो क्या मुझे आपको ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर छोड़ दिया जाएगा कि चूंकि हमने अब ला इलाहा कह दिया अब छोड़ दो? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद तो सारी पाबंदियां लगती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद ही तो असल काम शुरू होता है। तो ये जो मैंने आपने आज एक रवैया देखा है ना मुसलमानों का, चूंकि हम मुसलमान हैं इसलिए जन्नत में जाएंगे, बिकॉज वी आर मुस्लिम जन्नत हमारा भाई घर है, ये आयत उसकी खुशफहमी को दूर करती है। अल्लाह ताला कहते हैं, मिसाल आप इसको इस तरह ले लीजिए कि जैसे एक एम्प्लॉई है वो किसी जगह जॉब के लिए एप्लीकेशन देता है, फिर इंटरव्यूज के बाद उसकी जॉब फाइनल हो जाती है। असल काम किस दिन शुरू होता है? जिस दिन एग्रीमेंट साइन होता है। अब उसको अगले दिन 9 बजे जाना है, अब उनकी वर्कशीट को फॉलो करना है, अब उनको रिजल्ट्स देने हैं, रिपोर्टिंग करनी है, फिर ही होता है ना। वो एम्प्लॉई जो सारे काम कर करा के एग्रीमेंट लेकर आके घर सो जाए, भाई उठो जॉब पे जाओ, कहते नहीं जॉब तो पक्की हो गई है, भाई जाके चलो भेजे बीवी घर से जबरदस्ती, वहां जाके सो जाए, वहां जाके चाय पानी में, वहां जाके अपनी फेसबुक पे खेल रहा है, क्या जी भाई आ जाओ क्यों इधर, तो इतना काफी नहीं है? कोई जॉब आपको ज्यादा दिन नहीं रखेगी अगर आप वहां काम नहीं करें। बस यही आयत है, हसीबन नास, अल्लाह हम सब मुसलमानों को अगलों पिछलों को इस एक आयत में डांट रहे हैं, ओ मुस्लिम्स अगर तुमने खुद को मुस्लिम कहा है तो अब इसके तकाजे दिखाओ, पूरे करो, दुनिया को दिखाओ तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो, तुम काल अल्लाह और काल रसूल पर ईमान रखते हो, फिर अब करो। वहुम ला युफ्तनून, आजमाइशें तो आएंगी, हम इतनी सी नहीं बर्दाश्त करते, सिर्फ किसी के माथे पे तेवरी आ जाती है हमारा हुलिया देखकर, हाँ कहते नो 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 नो, पीयर प्रेशर में आ जाएंगे, लोग कहेंगे ये फनेटिक है। मैं कहती हूँ ये तो बेचारे बदनाम है ना, चंद लोग पाबंदियों का नाम लेकर गैर मुस्लिम, हम तो अपने मुसलमानों में नहीं अपने इस्लाम का इजहार कर सकते। मैंने तो खुद दुपट्टे खींचते देखे लोगों के, ये क्या मासी बन गई हो, इस हुलिया में हो तो नहीं जाना। एक औरत कहने लगी, मेरे हस्बैंड कहते मैं तुम्हें आगे नहीं बिठाऊंगा गाड़ी में अगर तुम पर्दा करोगी, तो मैंने कहा पीछे बैठ जाए, पीछे की सीट ज्यादा बड़ी है, मसला क्या आपका? भाई नहीं बिठाते तो ना बिठाएं। एक औरत यहां से पाकिस्तान गई और पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार होंगे अपने, तो कहने लगे तुम इस हुलिया में जाओगी तो मैं तो नहीं तुम्हें गाड़ी में साथ लेके जाऊंगा, ये अपने रिश्तेदारों की बातें। तो ये बदनाम है बेचारा अंग्रेज, हम पे पाबंदियों की बात करके, हमने तो अपने नफ्स पे पाबंदियां लगाई हैं। क्या आप पाकिस्तान में पीसी होटल में वलीमे की दावत में जा रहे हैं, आप जा सकते हैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक हुलिया बनाकर? आपके तो कदम मन 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 भर के होंगे। क्या आज हम अपने ही मुसलमानों के फंक्शंस पे जा सकते हैं? मैं सोचती हूं कि आज हम अपनी खुशियों को ऐसा बनाते हैं कि फरिश्तों को तो बाहर निकाल दो, और अगर रबी अव्वल का महीना है, अगर अल्लाह के नबी बिलफर्ज आ ही गए आपके कहने पे, तो किसी एक शादी को भी जाके देखा है तो अंदर दाखिल होंगे आपके शादी में? क्या हम कभी सोचते इस बात को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज के दौर में इस शहर में होते तो क्या हम उनको अपनी खुशी गम में बुलाते, और वो आते और वो खुश होके जाते कि नाराज होके जाते? तो बरकत कहां से आएगी फिर? ये आजमाइश है, ला युफ्तनून, ये आजमाइशें हैं। देखिए अपनी खुशियों अपने गमों को अल्लाह और उसके रसूल की पसंद नापसंद के मुताबिक ढालना। आज हम अभी इस पे नहीं काम कर सके, हमने कहां फतह करने इलाके। हमने कहाँ बेचारे गैर मुस्लिम्स को दावा करनी है, हमें तो ये बात पता ही नहीं है कि लोग अल्लाह की बात ना मानने की सजा दुनिया में भुगतते हैं, तो लिहाजा ये तो होगा, अल्लाह की सुन्नत है। वलकत फतन अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और अलबत्ता हमने तो आजमाया था उन लोगों को जो इनसे पहले थे। आपके पास जब एक सहाबी आए और बड़े तकलीफ़ में थे कि अल्लाह के नबी कब आएगी मदद, हबाब बिन अरद के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी के पास आए जिस वक़्त आप खाना काबा को टेक के मतलब पर्दे को या उसकी दीवार को टेक लगाए बैठे थे, तो सहाबे कराम ने नबी सल्लम के पास आए तो कहने के मता नसरुल्लाह, अल्लाह के नबी मदद कब आएगी, तो अल्लाह के नबी सीधे होकर बैठे और आपके चेहरे पे गुस्से की नाराजगी के तासुरात थे। आपने फरमाया तुमसे पहले के लोगों को आरों से चीर दिया जाता था, उनको तो आग की भट्टियों में डाला जाता था, लेकिन तुम लोग जल्दी करते हो। मैं सोचती हूँ अगर हबाब बिन औरत की हालत देख के अल्लाह के नबी ने यह कहा तुम जल्दी करते हो, तो हम आज के मुसलमानों को अब क्या कमेंट देंगे। मेरा ख्याल है तो वो यही कहेंगे कि तुम मुसलमान हो भी क्या, बाकी तुम्हारे ऊपर इस्लाम वाली कोई खूह है। इसीलिए फरमा दिया फला। अब ये आखिरी हिस्सा देखिए आयत का, क्यों आती हैं ये मुश्किलात, ये पाबंदियाँ क्यों लगती हैं। वलकत फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयालमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदकू, इस पर रुकिए। ये है आजमाइशों का मकसद, अल्लाह ये देखना चाहता है तुम में से किन्होंने सच कहा। सदकू उर्दू में सिद्क है ना, सादिक सिद्क मुसद्दिक, क्या मानी होता है, क्या सच की बात है इधर, किसने सच्चा कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये मुराद है। वलयालमन्नल काज़िबीन, और वो खूब जान ले झूठों को। जरा इस आयत पे गौर करें ना तो हाथ ठंडे होते हैं। इसको अरबी जुबान में इस्तफहाम इनकार कहते हैं, क्वेश्चनिंग स्टाइल है लेकिन नो कहने का मतलब है। ये ऐसे जैसे आप अपने बच्चे से कहते हैं तुम्हारा इरादा क्या है, तो अब इरादा क्या मैं आप बच्चे का इरादा नहीं पूछ रहे होते, उसको डांट रहे होते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। यहाँ भी बिल्कुल यही बात है जो हमें सामने समझ आ रही है कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट जमात, जिनको अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए चुना था, वो किस लिए थी कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो मुश्किलात आ रही थी उस पर सिर्फ ये पूछ लिया कि मुश्किल कब टलेगी। आज के दौर के मुसलमानों को इसे कायद पर सोचना है, ये छांटी हो रही है। छांटी का लफ्ज़ सुनते सिलेक्शन, जो इन फितनों के दौर में, जो इन आजमाइशों के दौर में अपने दीन पे जमेगा वो सच्चा है, और दूसरा बंदा आपको जान रहे जो लिखा हुआ इधर। हम क्या सोचते हैं, देखिए ये बहुत ही अहम बात है क्योंकि इस वक्त हम मौजू इतना सेंसिटिव पढ़ रहे हैं। जब जिंदगी में जब इस्लाम पर कोई बात आए, इस्लाम से मुराद हम सब मुसलमान हैं, इनफरादी इज्तमाही जो भी बात है, ये असल में आपका मेरा टेस्ट होता है। कितने लोग हैं जो बाकी बचा खुचा इस्लाम भी अपना बेच देंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, पुरानी मिसाल है लेकिन आपको याद होगी, 9/11 का नाम सुना है आपने, 2001 था मेरा ख्याल है, या बस पुरानी बात है। उस दिन एक फितना उठा था न्यूयॉर्क के एक शहर में, आप सबको पता है इमारत गिरी और जो कुछ भी हुआ। उस एक फितने ने, अब ये जो बात कह रही है ना वो बिल्कुल इस एकायद पे लेके कहूंगी, उस एक फितने ने कितने नाम निहाद मुसलमानों का इस्लाम खत्म कर दिया। गाड़ियों में से कुरान निकल गया, नामों में से लफ्ज मोहम्मद निकल गया, अब्दुल्ला निकल गया, और बच्चों की लड़कों की दाढ़ियां गई, औरतों के हिजाब गए। क्यों, बाहर जाना है खबरदार। मैं खुद अमेरिका में थी उस वक्त, नहीं गई थी, और वहां ये सारी अपनी आंखों से देख रही थी। आंखों से देखा हमने लोगों को इस्लाम के लुबादे से निकलकर अंदर का निफाक बाहर लाते। एक तरफ ये हुआ, और दूसरी तरफ आपको पता क्या हुआ, उस 9/11 के वाक़े के बाद जितना इस्लाम फैला, नॉन मुस्लिम आए, कुरान बिके। हमारे बहुत अच्छे साथी हैं वहाँ दारुसलाम कंपनी जिनकी है, जो वर्ल्ड वाइड उनके कुरान और इंग्लिश की बुक्स बहुत सारी हैं, उन्होंने हमें बताया था कि इस वाक़े के बाद रिकॉर्ड सेल हुई है हमारी किताबों की, और ख़ास तौर पर कुरान। और किधर जा रहे हैं, जेलों में किधर जा रहे हैं, कि लोग कहते हैं ये है क्या दीन, ज़रा हम सीखें। ये है वलियालमल्लाहु वल फलयालमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदकू और काज़िबीन। याद रखिए, जब कोई भी ऐसी आजमाइश आती है ना मुसलमानों पे, वर्ल्ड वाइड हो या कंट्री वाइड हो या जस्ट लाइक फैमिली वाइड हो, इसमें आपकी पोलराइजेशन होती है। समझते पोलराइजेशन, जब आप वो मिकनातीस रखते हैं ना तो उसके बीच में तो कुछ चीज़ें सारी उसके साथ, कुछ पोल्स होते हैं ना, कोई नॉर्थ और साउथ, वो उसके साथ जुड़ जाती हैं जाके, और जो वहाँ असल में नहीं लोहा होता वो अलग हो जाता है। बिल्कुल उनको खींच दिया जाता है, ये आपकी मेरी आजमाइश है, और ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ये अल्लाह का कुरान बताता है सिर्फ। लोग आपको कहेंगे बी लाइक क्या कहते हैं, असिमिलेट कर लो, इट्स ओके, बी जेंटल, फिर अब अपने अपने बच्चियों को ये तो नहीं करना। एक वो दौर था, आप हम सब जब छोटे थे ना, छोटे से मुराद के जवानी का शुरू का वक्त होता है, तो माँ बाप क्या कहते थे, बच्चियों को पैन उड़ा के भेजो, इनकी इज्जत ना लुटे, कोई इन पे गंदी नजर ना डाले। एक वक्त था ना कि बहू बेटियों को अलग नहीं करते थे। मुझे खुद याद है कि हमारे वालिद ने, जब मेरी बहन ने कॉलेज में दाखिला लेना था स्कूल के बाद, तो उन्होंने दो ही शर्तें लगाई थी कि एक तो आपके जाने आने का इंतजाम ऐसा होगा कि मुझे बाउंड नहीं होना पड़े, और दूसरी बात है आपको पर्दा करना पड़ेगा, आपको ये दो बातें मंजूर हैं, आप जाइए कॉलेज में। तो वो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक वो दौर था कि हम अपनी बेटियों को बाहर निकालने से पहले कहते थे कि देखो अगर पर्दे में जाना है तो चली जाओ, आज ऑपोजिट है। आज मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है कि ये अकेली बसों में जाती हैं, ये अकेली वैगनों में जाती हैं, ट्रेनों में जाती हैं, तो अगर ये मुसलमान रूप में ये गज का टुकड़ा सर पे ले जाएंगी तो लोग कहेंगे ये मुसलमान है, तो बेटा जाना है तो वेस्टर्नाइज बन के जाओ, तो फिर मुझे फिक्र नहीं है, फिर चली जाओ। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। इसके बाद बाकी बातें क्या रह जाती हैं। तो अल्लाह के कानून एक ही है, अल्लाह की बातें सच हैं। आप दुनिया के किसी कोने में बैठकर, यानी आपको किसी मुल्क में लीगलाइज कर लिया गया, आपको एक्सेप्ट कर भी लिया गया, आपको वहां की सिटीजनशिप भी मिल गई, मिसाल देती हूँ, कपड़े भी उतरवा लेंगे कल, उतार देंगे, इसलिए कि हमें तो ये काम लेना ही लेना है, हमें तो ये करना है, हमसे वो गलत बातें मनवाएं, लेकिन अगर अल्लाह ताला की नजरों से हमारा मुकाम निकल गया तो क्या होगा। अगर हम अल्लाह के जन्नत में अपनी सिटीजनशिप चाहते हैं, तो फिर याद रखिए उसको गोल बनाएं, अल्लाह की कसम दुनिया की सिटीजनशिप कहीं नहीं जाएगी। लिल्लाही माफ़ी समावाती माफ़ी अर्थ। और लोग हंसते हैं, कभी आप रिपोर्ट्स तो पढ़कर देखिए, गोरे हमारे हाल पे हंसते हैं, कहते हैं देखो ये है मुसलमान। ये चीज़ें आप कोट करें, और आप, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे खुद वेस्ट में आने का मौका दिया, और मैंने आपसे ज़्यादा घूम के दुनिया देखी है, हर मुल्क के मुसलमानों को देखकर मैं इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि अगर आज हमें अपने इस्लाम का यकीन होता तो ये सब लोग हमारे फ्रेंड होते, ये अल्लाह के भी फ्रेंडली हो जाते, ये रसूल के भी फ्रेंडली होते, ये मुस्लिम फ्रेंडली भी होते। ये हमने अपने गंदे किरदार और अपनी ड्यूल पर्सनैलिटीज और अपनी डबल स्टैंडर्ड से इनको अपने ऊपर बात करने का मौका दिया। एक बच्ची जब पाकिस्तान से वो मूव हुई, उनकी बच्ची 12-14 साल के करीब, अर्ली एज जैसे यंग की थी, तो वो पाकिस्तान में एक कोर्स भी करके आई थी, तो उस बच्ची के स्कूल में गई और कहने लगी कि मेरी बच्ची स्कूल में हिजाब अबाया पहनती थी और हिजाब है तो वो यहाँ भी पहनेगी। खैर स्कूल वालों ने कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की, कोई दलाल दें, ये घर आई, इन्होंने सूरत नूर की आयतें वगैरह सारी निकाल कर एक थीसिस बनाया और उनको दिया। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल वालों ने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं, बच्ची जो भी करे पहन ले। कुछ अरसा गुजरा, उसी स्कूल में एक और बच्ची आई और वो मुस्लिम थी और वो अरब थी, और उसके पेरेंट्स ने उस बच्ची के लिए जिस चीज़ की इजाज़त मांगी वो क्या था कि पैंट के अंदर शर्ट करने की बजाय मेरी बच्ची को शर्ट बाहर करने की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने नहीं दी। भाई क्यों नहीं दी? तो वो लेकर आए और वो उस मुसलमान बच्ची के पास लाए, कहने लगे अगर तुम मुसलमान हो ना तो फिर ये पहनो जो इस बच्ची ने पहना है, शर्ट बाहर करने से तो मुसलमान नहीं हो जाओगे। बात समझ गए? ये आधा तीतर आधा बटेर बनना, आधा दीन आधा दुनिया, कहीं के भी नहीं रहते। दुनिया में कहाँ इज्जत रहती है? डबल फेस हो, यहां बैठे कोई बात करें, बाहर जाके आप दूसरी बात करें, तो दुनिया में भी इज्जत नहीं रहती। आज हमारी मुसलमानों की बेइज्जती और हम पे जो मुश्किलात आई हैं उसकी बहुत बड़ी वजह ये हमारे डबल स्टैंडर्ड है। पूरे यकीन के साथ अल्लाह के दीन को फॉलो करें और अल्लाह से मदद मांगे, इंशाल्लाह ये सारी मुसीबतें मुश्किलात पीछे हो जाएंगी। फिर आप देखिए कि इसमें एक चीज़, ये अभी हम पहली किस्म डिस्कस कर रहे हैं ना कि आजमाइश होती हैं, अगर ये आजमाइश है तो अल्लाह की तरफ से है। हदीस लिखी हुई है पेज 49 पे देखिएगा, इमाम तिरमिजी और इब्ने माजा ने हज़रत साद बिन अबी वक्कास से रिवायत नकल की, उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह अय्युन्नास यशद्दु बलान, अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे कड़ी आजमाइश किन की है? अच्छा कुछ लोग हैं ना वो अपना नाम लिख लेंगे, सबसे बड़ी मेरी ही मुश्किल है। यानी बाज़ दफ़ा लोगों को अपने पे आने वाली छोटी सी मुश्किल बड़ी लगती है। बाज़ ख़वातीन कहती मैं बड़ी आजमाइश में, क्यों? मेरी मासी नहीं टिकती, ये बड़ी आजमाइश है मेरी। हैं, वो मेरे मियाँ दूसरी शादी का सोच रहे हैं, मेरे से बड़ी आजमाइश कोई नहीं है। यानी अपने पे आती है तो हम बहुत छोटी सारी को बड़ा कर देते हैं। तो सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी, दुनिया में सबसे ज़्यादा आजमाइशें किसकी हुई? तो आपने क्या फरमाया? अल अम्बिया, नबियों की। सुम अल अमसलु फल अमसलु, फिर उसके बाद जो उन जैसा था, फिर जो उन जैसा था। युबतल अल अब्दु अला हसबी दीन ही, इस हिस्से को हाईलाइट कर ले। आजमाया जाता है आदमी अपने दीन के मुताबिक। फइन कान फी दीन ही सुलबन इश्तद्द बलाउहू, व इन कान फी दीन ही रिक्कतुन उबतुलिया अला हसबी दीन ही, फमा यब्रहुल बलाउ बिल अब्दी हत्ता यत्रुकहू यमशी अलल अर्दी व मा अलैहि मिन खतियतिन। यकीन करें यह हदीस याद करने वाली है, इतनी खूबसूरत रिवायत है। इसका एक स्ट्रेच में तर्जमा देखिएगा। साहबी ने जब पूछा कि अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा आजमाइशें किस पे आती हैं, तो आपने फरमाया अम्बिया पर, फिर दीगर लोग दर्जा ब दर्जा। बंदे की आजमाइश इसके दीन के मुताबिक होती है। अगर वो अपने दीन में मजबूत हो तो इसकी आजमाइश भी कड़ी होती है। अगर इसके दीन में कमजोरी हो तो इसे भी इसके दीन के बकदर आजमाया जाता है। आजमाइश बंदे के साथ चिमटी रहती है, यहां तक कि वो इसे इस हालत में जमीन पर चलते हुए छोड़ती है, यहां तक कि वो इसे इस हालत में जमीन पर चलते हुए छोड़ती है कि इसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं हो रहता। क्या समझ आई बात की? नबियों से ज्यादा आला ईमान तो किसी का नहीं होगा, और दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइशें तो नबियों की हैं। आप देख लीजिए, जरबुल मिसल है, हर रिश्ते की आजमाइश नबियों की सूरत में मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अपना बेटा आंखों के सामने डूब रहा है, अपनी बीवी जो वो इस्लाम नहीं ला रही है, हजरत इब्राहिम का बाप इस्लाम पे नहीं आ रहा बल्कि बेटे को कहता है मैं तुझे रजम कर दूंगा, पत्थर मार दूंगा। फिर आप देखिए बीमारियों की सूरत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सोशल प्रेशर की सूरत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा को एक सियासी लीडर के नाते से कितना समाया गया, हजरत ईसा की तो जान लेने की कोशिश की गई, और रह गए अपने प्यारे नबी। तो जितने कातिलाना हमले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुए, इतने तो किसी और पे नहीं हुए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उनकी आजमाइशें, और आज हम अपनी आजमाइशें देखें। मैं अक्सर बैठ के सोचती हूँ कि जो हकीकी आजमाइशें सहाबा की हुई, अगर आज हमारी होती तो हम तो कब के खैर बात कह चुके होते इस्लाम को कि हमसे नहीं ये रखा जाता, संभालो तुम। तो यही बात जहां बताई गई कि इंसान की आजमाइश उसके ईमान, ज़ौफ, कुव्वत, नक्स पे होती है। मसलन मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी। जैसे आप देखिए कि एक माँ है, उसकी दो बेटियां हैं, एक बेटी का ईमान बहुत आला, एक कम ईमान वाली है। आप देखेंगे ज्यादा ईमान वाली जो होगी ना, ज्यादा ईमान वाली बच्ची जो होगी ना, उस पर ज्यादा आजमाइशें आएंगी। एक तो अल्लाह और निखारना चाहता है, अल्लाह ताला दुनिया के दर्जे बुलंद करवा देता है, और दूसरी बात इसमें यह भी होती है कि अल्लाह ताला छांट रहा होता है, अल्लाह उनके दीन को निखारता है। जैसे आप ये लफ्ज़ फितना हम बोलते हैं ना उर्दू में भी, अरबी का लफ्ज़ है असल में, फितने के लफ्ज के अंदर पता क्या मानी है कि धात को यानी मेटल को आग में डालना ताकि उसका खोट अलग हो जाए। सोना कभी पिघलता देखा हो, ये तो सुना ही होगा ना, सोना पिघलाया उसमें से खोट निकला। ये जो आजमाइशें होती है ना, ये हमारे खोट को अलग करती हैं, और यकीन करें कि ये बहुत मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें होती हैं। हर बंदा, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगला टॉपिक जब हमारा आएगा तो आप खुद देखेंगे आजमाइशों की मुख्तलिफ किस्में भी हैं। आप अपने ईमान के मुताबिक थोड़ी चीज को बड़ा समझ रहे हैं या बड़ी को छोटा समझ रहे हैं? कुछ का जिस्म का एक एक अंग बीमार होता है, हाल पूछिए क्या आला कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कुछ तो सुनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लोग क्या कहते हैं, कुछ बोले? मसल जैसे एक साहबी थे या कोई ताबई थे, शायद बुजुर्ग थे, तो बीमार थे। किसी ने उनसे पूछा सुनाइए क्या हाल है, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कोई इमाम थे, नाम ना लिखे, बस कोई भी एक शख्सियत थी। कहने लगे क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जो देखने आए उनकी तीमारदारी का, कुछ तो कहिए। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दर्द तो नहीं है? जब उसने ज्यादा कुरेदा तो कहने लगे मेरे भाई मैं जो बात नहीं कहना चाह रहा तो मुझसे क्यों गुलवा रहे हो? हमारा हाल, अल्लाह रहम करे कोई हमारा हाल पूछे तो जाए किधर, ऐथे पीड़ ओथे पीड़, ऐ दुखदा ओ दुखदा। भाई अब इस उम्र में दुख नहीं है, आप क्यों लोगों को अपनी उम्र बताते हैं? तो हजम नहीं होता। अच्छा आपको पंजाबी आती है? नॉर्वे में रहते हुए ना लोगों को खुश करने के लिए पंजाबी बोलने की आदत होगी। कई अम्माएं ऐसी आई होती हैं, वो मेरे ये 2 हज़ार पंजाबी के जुमले सुनने के लिए बेचारी सब्र कर रही होती हैं, क्यों कहते लेकिन कोई बुरी बात तो नहीं है पंजाबी बोलना, जो आती है जुबान तो बोलनी है ना। तो लोगों को अपना दुख सुख ना दिखाएं, याद रखिए खुशी भी अंदर रखें गम भी अंदर रखें। लोगों के लिए आपकी जुबान में बस दो ही जुमले होने चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने जिस हाल में रखा वो मेरे मेरे मामलात मेरे मतलब मेरी करतूतों से तो बहरहाल अच्छा है, मैं तो इससे ज्यादा डिजर्व करती थी। बस एक हाय सर में दर्द है, भाई शुक्र करो कैंसर तो नहीं है, हाय बुखार हाय बुखार, शुक्र करो फालिज तो नहीं हो गया। तो आप देखेंगे कि ये एटीट्यूड आपका बदल देता है आपके रवैये को और तकलीफ कम लगती है। तो हर वक्त वावेला नहीं करना, इस आया हदीस का ये हिस्सा याद कर लीजिए, मैं बोलती हूँ आप जरा मेरे साथ दोहराएंगे, ये अरबी का लफ्ज, युब तलल अब्दु अला हसबी दीनी ही, फिर पढ़ते हैं युब तलल अब्दु अला हसबी दीनी ही। युबतल का मतलब आजमाया जाता है, अलाबदू बंदा, अला मुताबिक, हसबी हसब यानी हसबे हाल जिसको कहते हैं, दीन ही अपने दीन के मुताबिक, जितनी भी बंदे की ताकत होती है या उसकी वसत होती है तो उतना ही उसके ऊपर बड़ी आजमाइश आती है। बास लोग कहते हैं कि जी फलां पे तो कोई आजमाइश नहीं आती, तो शुक्र कीजिए नहीं है। बास दफ़ा आप देखिए आजमाइशों के पर्दे में अल्लाह ताला हमारे निफाक को छुपा लेता है, बाद दफा हम पे पाबंदियां लग जाती हैं, शुक्र कीजिए पाबंदी लगी हुई है, मुनाफ़ा छुपी भी है, क्योंकि पाबंदी उठ भी गई तो आपने करना काम फिर कोई नहीं दीन का। और याद रखिए ये बात आप मेरे साथ इस वक्त नोट कर सकते हैं कि बंदे का जो अंदर होता है ना, अंदर से कुछ लोग होते बहुत खुले दिल के होते हैं, फराख दिल होते हैं, बड़ी से बड़ी बात कोई कह दे कहते फिर क्या, फिर की है, होर भी कह लो, जितना कहना कह लो, मैनू की फर्क पैंदा। ये अंदर की आजजी होती है, कुछ लोग देखने में बड़े आजिज मिजाज लगते हैं पर अंदर से वो पत्थर की चट्टानें होती हैं। बात करके जाना किधर, मुझे तो बात ही नहीं पसंद आई, मुझे कुछ समझा ही नहीं, मुझे तो कोई अहमियत ही नहीं दी, ये भी बहुत बड़ा फितना बनता है। सबसे ज्यादा मैं जो महसूस करती हूँ ना, इंसान को जो तकलीफ में चीज डालती है ना, वो उसके नफ्स की बुराई है। इसीलिए अब अगला हिस्सा हम थोड़ा सा टच करेंगे कि पहली किस्म समझ आ गई है आजमाइशों की। आप अपने लिए क्या सोचें कि किसी पे कोई मुश्किल आई हुई है ना, तो आप क्या कहें, इसकी आजमाइश है, ये है बड़ी नेक बंदी, ये बड़ी प्यारी मेरी बहन है, बस इसकी आजमाइश है। और जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आए तो आप क्या कहें कि ये मेरे गुनाह की अलामत है, क्योंकि और हम अक्सर यकीन करें अल्लाह हमें माफ करे अल्लाह हमें हिदायत दे, हम इसे ऑपोजिट समझते हैं। किसी को देखे ना जरा मुश्किल में, कहते हैं वेखे अल्लाह ने फाड़ लिया ना, अल्लाह होर फड़ेगा, मेरा दिल दिखाया सी ना, देखी आज इन्हों कीड़े पहने हैं, अस्तगफिरुल्ला। हम अमूमन ऑपोजिट समझते हैं, दूसरे को तकलीफ में देख के कहते एने भी बड़ा अजमाया मुश्किल, एने भी अपनी बीवी ने बड़ा सताया सी, देखिए बेटी का गम पै गया ना, यानी मुफ्ती मुफ्ती ये आजम हम खुद हैं, फतवे देते बेचते रहते हैं जरा, और लोगों का हाल पूछ कहेंगे बाहर आके, कहेंगे होनी नहीं थी शुगर चीनी जो इतनी खाती है, तो ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना, ये पराठे तो इतने खाती है। यानी लोगों को आप अपना गम बता के ना सच्ची बात मौका देते हैं कि हम पे बातें करो, ठीक है। तो ये पहली किस्म समझ आ गई, अब दूसरी पे चलते हैं, फिर दोनों का तकाबुल होगा। इतनी बात में से कोई सवाल है आपके जहनों में, बात बहुत क्लियर है ना, बल्कि ऐसा करती हूँ कि ये दूसरा बता के फिर इकट्ठा एंड पे सवाल कोई होगा तो आप पूछें, आप लोग जो भी जहन में आते हैं ना उसको लिख लिया करें, तो एंड पे हमेशा हम थोड़ा सा इंशाल्लाह वक्त क्वेश्चंस के लिए रखा करेंगे। तो पहली किस्म क्या थी, आजमाइशें, हो गई बात। अब दूसरी क्या है, मसाइब का बतौरे सजा आना, इसको भी पढ़ लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी पता चलता है और कुरान से कि बहुत सारी मुसीबतें जो हम पे आती हैं वो किस वजह से आती है, हमारे गुनाहों के। इसकी पहली दलील नोट कर ले, सूरत शूरा आयत नंबर 30। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबीमा कसबत अईदीकुम वयाफू अन कसीर, और तुम्हें जो भी मुसीबत लाहक होती है तो वो तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से होती है, और बहुत सारी चीज़ों से तो हम दरगुजर ही कर जाते हैं। कितना प्यारा अंदाज है इस आयत का अगर आप देखें। और सूरह शूरा वैसे ही बड़ी प्यारी है, पूरी सूरह शूरा का जो मेन थीम है वो है ही उम्मत मुस्लिमा की कानून साजी है। तो उसके बीच में अल्लाह ने ये कानून दे दिया कि लोगों, जो मुसीबतें तुम्हें पहुँचती हैं तुम्हारी पुरानी पिछली बुराइयों की वजह से होती हैं। और याफ़न कसीर क्या है, इसके ऊपर एक मुफसर है शेख सादी, उनकी बहुत मारूफ तफसीर है, 4 जिल्दों में दारुस्सलाम ने भी छापी है तफसीर सादी के नाम पर। तो वो उसमें लिखते हैं, अल्लाह ताला आगाह फरमाते हैं कि बंदों को इनके बदनों, मालों, औलादों और इनकी महबूब और अजीज़ चीज़ों में आने वाली हर मुसीबत इनके करतूतों की बिना पर होती हैं। बिला शुबा जिन बुरे आमाल से अल्लाह ताला दरगुजर फरमाते हैं वो इनसे कहीं ज़्यादा हैं जिनके सबब वो सज़ा देते हैं, क्योंकि यकीनन अल्लाह ताला बंदों पर तो जुल्म नहीं करते लेकिन वो बंदे खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अगर आप इस आयत पर गौर करें ना तो आपको इसमें 3 वार्निंग्स दिखेंगी, हाईलाइट कर लीजिए आयत के अंदर से। बेशक पहली चीज, वमा असाबकुम, और जो तुमको पहुंचती है, ये जो मा है ना ये नाफिया है, नहीं के मानों में आता है अरबी जुबान में। फिर देखिए, मिम मुसीबतन, कोई भी मुसीबत, मुसीबत का लफ्ज क्या है, नकरा, एक होता है कॉमन नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन है, यानी हर छोटी से छोटी मुसीबत ये मुराद है। तीसरा, मिन इस्तग्राकिया, इस्तग्राकिया कहते हैं जो सारी चीज़ों का अपने अंदर गर्क कर दे, डुबो दे, यानी कोई भी, क्या मतलब बनता है इसका, तुम्हें कोई भी मुसीबत नहीं पहुंचती मगर तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से। क्या पता चला कि इस आयत का ताल्लुक गुनाहगार लोगों से है, आयत का ताल्लुक मुसलमान और दीगर गुनाहगार लोगों से है, लेकिन क्योंकि जिनके गुनाह नहीं होते जैसे अंबिया कराम, इन्हें भी मसाइब पहुंचते हैं। और पीछे हम हदीस पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों की, और उसके बाद फिर जिसका जितना ईमान ज्यादा होता है उतनी आजमाइश आती है। इसी तरह बच्चे, कभी बच्चों पर आजमाइश आ जाती है, अब वो क्या होता है, बच्चों के तो गुनाह है नहीं। मजनू, दीवाने, बावले, जिनकी सोच नहीं, उनका ताल्लुक पहले वाली मुसीबतों में है। इसके अलावा जो आप और हम आम लोग होते हैं, जो वाकई इंसान गलतियों का और गुनाहों का पैकर है, तो अमूमन जो हम पे मुसीबतें आती हैं ना, ये हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं। अब मिसाल है कि आप किसी को देखें और उसको, मिसाल देती हूँ, मुसीबत हम किसको कहते हैं, बीमारी को कहते हैं ना। अब आप किसी को देखने गई तो उनकी कमर में दर्द है, और अगर आप जाके कह दें अल्लाह ताला आपके उस गुनाह को माफ़ करे जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द है, नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि हाँ हाँ मैंने क्या कर लिया अल्लाह का। लेकिन ज़रा देखिएगा सलफ सालहीन, जो हमारे असलाफ थे, बुजुर्ग थे, वो तकलीफ़ आने पे क्या कहते थे। इसमें चंद मिसालें मौजूद हैं इधर। सबसे पहले अस्मा बिनते अबी बकर, हज़रत आयशा की बहन थी, जब इनको सर दर्द होता तो अपना हाथ अपने सर पर रखती और फरमाती, इनके जुमले नोट कर लीजिए, बिज़म्बी, मेरा गुना, वमा यग़फिरुहुल्लाहु तआला अक्सरु, हाईलाइट करना चाहें तो कर लीजिए, कहती हैं मेरे गुनाह की वजह से है और जो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देते हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या पता चला, हज़रत अस्मा के सर में जब दर्द होता था तो वो कहती थी ये मेरे गुनाहों की वजह से है, और बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह ने माफ़ कर दिए। अच्छा हम क्या कहते हैं, कैसे, कभी आप किसी को सर दर्द तो नहीं हो रहा इस वक्त, आप कहेंगे ये बोलती जा रही है इसलिए सर दर्द हो रहा है, आज सुबह सुबह उठा के भेज दिया सर दर्द हो रहा है, चाय नहीं ना पी के आई इसलिए सर में दर्द हो रहा है, वो गर्मी लग गई है सर्दी हो गई है सचाय में दर्द हो रहा है, ये मस्जिद वाले क्या है इन्होंने पता नहीं हमें शायद मस्जिद में ठंड है सर दर्द हो गए, नहीं सोचेंगे तो ये एक लफ्ज़ नहीं हम बोलते, सब मिलके बोले बिज़म्बी, याद कर लें आज के बाद, आपका बच्चा रो रहा है ना बिज़म्बी, आपके शौहर को आप पे गुस्सा आ रहा है बिज़म्बी, आपकी बिजली, आपका आपकी जो टैब है वो लीक करने लग गई, उस पर लिख लें बिज़म्बी। हर घर की टूटी फूटी चीज़, हर छोटी बड़ी चीज़, हर रिश्तेदार का आपसे नाराज़ होना बिज़म्बी, कितना प्यारा कोड वर्ड है, ये मेरा गुना है, ये मेरे गुना की वजह से। और यकीन करें ये सोच बंदे की इस्लाह का दरवाज़ा खोलती है। हम कहते हैं ना बिज़म्बी बाली, मेरे शौहर का गुना, और हमने तो अपने शौहर को कैश पे रखा हुआ है, हर चीज़ में आगे पेश करेंगे इनकी वजह से, ये इन्होंने मेरी मत, और कुछ ना समझ आए ना गरीब बंदे की कोई गलती तो कहते आपने मेरी मत मार दी है, मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया, बेगम मुझे माफ कर सकती हो, अब वो मरने के बाद ही करूंगी। वो कई कहते हैं ना मुझे कसूर नहीं अपना समझ आता, तो कहते कसूर तो वो हो गया था आज से 15 साल पहले, अब उसको भुगत रहे हैं। और अक्सर खवातीन तो यकीन करे बच्चे और मियाँ पटक से बोलती हैं, देर क्यों हो गई, मियाँ नहीं गए, जल्दी क्यों हो गया, ये हो गया, बच्चा रो पड़ा, मियाँ बच्चे। और माशाल्लाह जो ससुराल में रहते हैं तो फिक्र ना करें, बहुत सारी सासों के गुनाह भी बहुओं से माफ हो जाने हैं। वो सास नहीं चाहती, वो ससुराल नहीं चाहते, वो मेहमान आ जाते हैं, वीकेंड पे ये आ गए थे, भाई को भी जम्बी बोलना मुश्किल है, जरा पढ़े हाँ पढ़ाड़े की तरफ भी जम्बी, सारे तस्वीर करें जम्बी। अब एक नया वजीफा ईजाद करके जा रहे हैं हम, बिजम भी बिजम भी बिजम भी। और सच्ची बात है, कल वाले दौर में देखे किसी ने ये वजीफा बना के फेसबुक पे एक मैसेज डाल देना है कि कोई तकलीफ आए तो बिजम भी की तस्बीह 101 बार करो और फिर उसको पढ़ के फूंक लो। नहीं ख्याल आना तो अपने जम पे नहीं आना, अपने गुनाह पे नहीं आना। यकीन करें ये सोच बंदे का दिल ठंडा कर देती है कि मेरे पे कोई ज्यादती नहीं कर सकता, ये मेरे गुनाह हैं जो किसी को मेरे पे मुसल्लत करते हैं। फिर इसी तरह से मुर्रा हमदानी का नाम लिखा है इन्होंने, ये कहते हैं, इन बयान करते हैं कि मैंने शुरैह की हथेली पर फोड़ा देखा। शुरैह एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और नेक शख्स थे, तो उनके हाथ पे एक दाना निकला है, जैसे एक फोड़ा कह लीजिए, समझते ही आप सारे फोड़े को, पिंपल भी नहीं कह लेंगे, यानी को जख्म कह लीजिए। तो मैंने अर्ज किया, ए अबू उमैया ये क्या है? ये अबू उमैया जो था ना, ये इनकी वो थी कुनियत थी, और कहते हैं कि 80 हिजरी से पहले या बाद में फौत हुए और इनकी उम्र 100 साल 108 बरस या इससे ज़्यादा थी और 70 साल तक ये काजी रहे थे। इनका नाम आते काजी शुरैह के नाम पे, यानी साहबी तो नहीं थे लेकिन बाद के बहरहाल ताबईन में से थे। तो किसी ने देखा कि इनके हाथ में एक जख्म हो गया, तो कहा ये क्या हुआ? अच्छा हम होते ना तो पूरी कहानी सुनाते, वो जम वहां से लग गया, वायरस फैल गया, फिर ये हो गया, फिर वो किया। इनका जवाब सुनिए, हासबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है और ज्यादा गुनाहों से तो वो दरगुजर ही फरमाते हैं। ये सूरह शूरा की आयत पढ़ते हैं, कहते हैं ये मेरे किसी गुनाह की सजा है और अल्लाह ने मेरे बड़े गुनाह माफ किए हुए, वरना ये एक दाना नहीं 10 दाने होते। कितनी पॉजिटिव सोच है, किसी बंदे से आपको गिला रहेगा इसके बाद दुनिया में? मैं सोचती हूँ अक्सर कि सच्चा ईमान अंदर आता है ना, शाम का हमारा जो टॉपिक है उसमें इंशाल्लाह हम ये चीज़ें सीखेंगे कि सच्चा ईमान और इखलास अंदर आता है ना, आपको दुनिया में कोई बंदा बुरा नहीं लगता। सारी गलतियाँ सारे कसूर मेरे हैं, भी जम्बी मैं खराब हूँ, मेरे अंदर कमी है, साथी तो सारे बड़े प्यारे हैं। और अपोजिट पे ले लें, मैं बहुत अच्छा हूँ बाकी सारे खराब है, मैं इतनी अच्छी इतने खराबों में फंस गई, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड होता है। फिर इसी तरह एक तीसरी मिसाल इन्होंने दी है, इब्ने औन ने कहा, बिलाशुबा जब मोहम्मद बिन सीरीन पर कर्ज चढ़ गया तो इसकी वजह से गमगीन हो गए। आपको पता है मोहम्मद बिन सीरीन कौन थे? ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, 110 हिजरी में फौत हुए थे और ख्वाबों की ताबीर में ये बहुत मारूफ है। आप इनकी किताब भी है इमाम मोहम्मद बिन सीरीन की ताबीर और रोया पे। तो जब इन पे कर्ज हुआ तो कहने लगे, यकीनन मैं इस गम के सबब को पहचानता हूं, यानी ये मैं मकरूस क्यों हो गया हूं, ये मेरे 40 बरस पहले किए हुए गुनाह की वजह से है। बात समझ है? यानी आज कर्जे में आगे कोई सबब बना होगा तो आगे ना, कहते हैं ये मेरा 40 साल पुराना गुनाह है, अल्लाह ने इस कर्ज की सूरत में मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया। अल्लाह हमें भी सेल्फ एनालिसिस का ऐसा ही मौका दे, खुद इख्तसाबी करके देखिए, दुनिया में आप सबको अच्छा समझेंगे अपने सिवा। फिर इसी तरह से अबू सुलेमान दर्रानी से पूछा गया, मा बालुल उकलाऊ अजालुल लौमु अमन असा इलैहिम, अक्लमंद लोग अपने साथ बुराई करने वालों को काबले मलामत क्यों नहीं गर्दानते? नोट करिए जुमला, ये हम सब के काम का है। कहते हैं कि जो अक्लमंद लोग हैं, जब कोई उनके साथ बुराई करे, मिसाल है कोई कर दे, तो वो उनको मलामत क्यों नहीं करते? बात वाज़ है? आप अकलमंद में नाम लिख के सोचिए, मसलन हमारे साथ कभी कोई क्या बुराई करता है, कोई रिश्तेदार हमारी बुराई करता है, कोई गीबत कर दी, किसी ने हमारे खिलाफ कोई बात कह दी, यही कुछ होती है ना बुराइयां, कोई हमें हमारी गीबत कर दे या कुछ भी, तो क्यों नहीं आप उनको बुरा कहते? जवाब उनका बड़ा खूबसूरत है, लियन्नहुम अलिमु अन्नल्लाह तआला इन्नमा इब्तलाहुम बिज़ुनूबिहिम, क्योंकि बिलाशुबा वो जान चुके हैं कि दर हकीकत अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों की वजह से इनको मुसीबत में डाल दिया है। बात समझ गए? तो जब मुझे पता है कि मेरा गुनाह, देखिए ना जाहिरी सबब तो दिख रहा होता है, बस आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, जवान बच्चा है, माँ को तंग कर रहा है, आगे से बोल रहा है। अब जाहिर तो साफ दिख रहा है कि आपका बच्चा आपके आगे बोल रहा है, लेकिन अगर आप अलो कला में से ना, अगर आप अक्लमंद हैं, आप 25 साल पीछे जाएंगी, मैंने भी अपनी माँ को ऐसे सताया हुआ है। ये वो जो उस दिन मैंने माँ के साथ ऊंची बात की थी ना, आज मेरा बच्चा बोल रहा है, फौरन तौबा करेंगे, अल्लाह रब्बे फिर अल्लाह रब्बे रहम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, उधर का मामला आप सीधा कर लें, देखिए आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मान लीजिए ये होता है ऐसा बात, हत्ता के बहुत खूबसूरत हदीसें हैं इसमें और भी, अगर मौका मिला तो आपके साथ शेयर करती रहूंगी। फरमाया कि किसी का जानवर दूध थोड़ा दे, या आप दूध लेने गए उससे और उसने लात मार दी, ये भी आपका कोई पुराना गुनाह है, वरना एक जानवर कैसे आपके आगे अड़ी कर सकता है। तो जब हमारे छोटे या डिपेंडेंट्स या हमारे कोऑर्डिनेटर्स हमारी बात नहीं मानते या हमारे साथ ज्यादती करते हैं, ये पीछे का कोई खाता खुला होता है जो हमने पे नहीं किया। नॉर्वे में एक असूल है, मैं उससे ये बात वहां भी समझाती हूँ, आपको भी समझाती हूँ। बस आपने अपने घर का बिजली का बिल नहीं दिया, एक महीना नहीं दिया, दूसरे नहीं देंगे, पाकिस्तान में क्या होता है, बिजली काट देते हैं। नॉर्वे में पता क्या होता है, वो शुक्र करते हैं आपने बिजली का बिल नहीं दिया। वजह क्या है, शुरू में वो आपको एक रिमाइंडर भेज देंगे, और पहले अगर 100 करोन बिल था ना, तो उस पर 50 लगाकर वो खुशी खुशी 150 भेजेंगे, और वो दुआएं दिल में कर रहे होते हैं, अल्लाह करे इस दफा भी ना पे करें। अगले महीने वो 150 के ऊपर फिर लगा कर इंटरेस्ट लगाते हैं सूद, तो 300 करते हैं। एक आध रिमाइंडर के बाद वो क्या करते हैं कि आपकी बिजली तो खुली आ रही है, आप कहते हैं मजा जी बिल भी नहीं आ रहा और बिजली भी है, लेकिन वो आपका नंबर एक वो इनखासो बोलते हैं, वहाँ एक पूरा इदारा बना हुआ है कि जो लोग अपनी पेमेंट्स नहीं देते ना कंपनियों को, कंपनियाँ उस कंपनी को वो केस दे देती हैं, जैसे वकील हायर करना है। अब वो जो इनखासो वालों ने आपसे लेना है ना, वो अल्लाह की पनाह है, वो 100 का बिल बाद दफा 10,000 1,000 रुपये भी बच जाएगा, वो जमा करते रहते हैं, और जिस दिन फिर आपने वो पे करना है, वो आपसे एक से एक लेगा। बस इस बात को यहां समझ लें, हम अल्लाह के बिल नहीं पे करते, हम अल्लाह के हक नहीं देते, अल्लाह हमारे केस, हमारे बच्चों, हमारे शोहरों, हमारे ससुरालों, हमारे कोऑर्डिनेटर्स और हमारे हुक्मरानों और दुनिया के सुपर पावर्स के हाथ में दे देता है, जाओ तुम निपटो इनसे। अल्लाह तो अच्छा है, उसने तो एक का एक ही लेना था, फिर दुनिया वाले हमारी चीज़ें निकलवा के हमारी तौबा कराते हैं। हमेशा अल्लाह से अपना मामला सीधा कर लें, मेन स्विच ठीक कर लें, छोटे सारे स्विच खुद ही ठीक हो जाएंगे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो शौहर बीवी का झगड़ा होता है ना, वो असल में अल्लाह और बंदे का झगड़ा होता है, उसका रूप आप बदल गया एक शौहर की सूरत में, आपने अल्लाह का हक नहीं दिया, कमी की, गुनाह किया, आपने नमाज नहीं पढ़ी। मसलन बात औरतें कहती हैं हमारे हस्बैंड हमें क्लासेस में नहीं आने देते, पाबंदी लगाते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा नमाज पढ़ी थी, नमाजों का क्या हाल है आपकी, कहती छुट्टी जाती हैं, पूरी तो नहीं होती, छूट जाती हैं, लेट हो जाती हैं। मैंने कहा बस जाइए आप वो ठीक कीजिए, आपका शौहर आपको स्कूल आने देगा, ये अल्लाह ने आपके शौहर को पैसे दे, आपके शौहर को काम दिया है कि ये मेरा हक नहीं दे रही, नमाज नहीं पढ़ती, आप जरा इसको क्लास में जाने से रोक लें। समझ आई ये बात आपको, एक छोटी सी मिसाल देती हूँ फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। आप देखिए किसी ने आप मिसाल है कि किसी शहर में यहाँ से कभी कभी जाती हैं, वहां से किसी आपके जानने वाले ने आपसे 1,000 यूरो कर्ज ले लिया, आपको कहा कि 1 महीने बाद दे देंगे, आप कहते हैं कोई बात नहीं दे देंगे, आपने उनको दिया, महीने बाद पूछा टालने लगे, आपने कहा नहीं दे सकते, बात थोड़ी आगे बढ़ी, 2-3 महीनों पे चली गई, आपको समझ आता है इन्होंने देने नहीं है। आप एक दिन यहां से पहुंची, मैं आ रही हूं, आप उनके शहर में पहुंच गई उनको लेने देने के लिए, पता चला आपके आने का सुन के वो भाग गए, सामना नहीं किया, दरवाजा नहीं खोला। अब आप रोज तो नहीं जाएंगी ना उस शहर में, लेकिन आपको याद आता है कि उसी शहर में आपकी एक और भी दोस्त रहती हैं, तो आप उन्हें कहेंगी जरा आप सुबह आते जाते या किसी वक्त उनको याद दिला दें और मेरे पैसे जब वो दें तो मुझे दे दें। आप क्या हुआ कि वो उसके लोकल शहर का बंदा उसके सर पे आपने मसलत कर दिया, आप पीछे हो गए वो आगे आ गया, क्योंकि आप नहीं ले सकते अब वो लेगा। इतनी बात समझ आ गई है, आप अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं, ये हमारे लिए मुश्किल है दूसरे शहर जाना लाना देना, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल यही मामला हमारा अल्लाह के साथ होता है, हमने अल्लाह का कुछ हक देना होता है, हम नहीं देते, तो अल्लाह ताला हमारे साथ रहने वाले लोगों में से किसी को हम पे मुसल्लत करता है, तुम मेरा ये हक लेके दो, बस सीधी सी बात है। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे कि जब भी कोई गुनाह अपना करें उस वक्त देखें। इसी मौजू की एक और हदीस आप आयत कुरान में जो है वो सूरत रोम आयत 41 है, ज़हरल फसाद फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुशकी और तरी में लोगों की बदामालियों के बायस फसाद फैल गया, ताकि वो यानी अल्लाह ताला इन्हें इनके कुछ करतूतों का मजा चखाए, शायद कि वो बाज आ जाए। ये बड़ी मारूफ आयत है सूरत रोम की। तो आप देखिए कि ये जो जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहर है, इसमें क्या कुछ आता है, कहत साली है, मौतें हैं, आग लग जाना, गरक हो जाना, बरकतों का ख़त्म होना, नुकसान, गुमराही, और बीमा कसबत ए दिन नास में क्या कुछ आ रहा है, नाफरमानियों की नहुसत उनके करतूतों के सबब। मकसद क्या है इसमें अगर आप हिस्सा हाईलाइट करें, लअल्लहुम यरजिऊन, अल्लाह मुश्किलों में इसलिए डालता है कि हम उसकी तरफ पलट आए और उस बुराई को छोड़ दें। और शेख सादी कहते हैं जहरा का मानी है खुलकर सामने आ गया। तो खुलासा क्या निकला आज की पूरी नशिस्त का, खुलासा अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना आज का टारगेट पूरा किया। मैं चंद जुमलों में आज की पूरी बात को समअप कर देती हूँ। आज हमने सबसे पहले मुसीबतों की हकीकत देखी। मुसीबत तो आएगी, पक्की बातें आएगी, इधर से नहीं आएगी तो उधर से आ जाएगी, उधर से नहीं तो उधर से आ जाएगी, लेकिन आएगी। फिर दूसरी चीज हमने देखी कि मुसीबतों के आने के अमूमन दो बड़े सबब हैं, टू फैक्टर्स हैं, टू रीजंस हैं। पहला सबब क्या है कि अल्लाह ताला आजमाइश चाहता है बंदों की, इम्तिहान होता है, खरे खोटे को अलग करना होता है। इस किस्म की आजमाइशें अमूमन अंबिया कराम और नेक लोगों पर आती हैं, और उम्मत मुस्लिमा पे जब ऐसी कोई इज्तमाही आजमाइशें आए तो छांट मकसद होता है, कौन उन फितनों में और ज्यादा अपने दीन पे जमता है और कौन दीन का लुबादा उतार देता है। और दूसरी किस्म जो हम पे मुसीबतों की वजह की आती है वो क्या है, हमारा कोई पुराना गुनाह होता है, वो अल्लाह ताला हम पे मुसल्लत करते हैं। उससे बचने का इलाज क्या है, अपनी अल्लाह के साथ ताल्लुक, अपने अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को दुरुस्त कर लिया जाए और माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला उसको माफ़ करते हैं। कल का हमारा टॉपिक बहुत अहम है, बहुत खूबसूरत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी बात का पूरा करवाया। अगला जो टॉपिक है उसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि मुसीबतों की आमद के असबाब क्या है। असबाब समझ रहे हैं, यानी रीजंस, क्योंकि आज तो एक ढकी छुपी बात हुई है ना, सॉरी असबाब के बर बात है। अब ये कि मुसीबतें आने से पहले क्या काम करें, वही बात जो शुरू में आपको बताया कि हॉस्पिटल और एम्बुलेंस बनाने की बजाय उस रास्ते को ही बंद कर लें जहां से गिरना है। तो कल का जो हमारा टॉपिक है, हम 10 चीज़ें पढ़ेंगे बहुत डिटेल के साथ कि मुसीबतों के आने से पहले क्या काम कर लें कि मुसीबतें आई ना। ये बिल्कुल वही बात है कि खिड़कियां पहले ही बंद कर लो ताकि अंदर मट्टी ना आए। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो हमें इससे फ़ायदा दे। ये किसी का सवाल शुरू में आया था, थोड़ा पर्सनल लगा मुझे, मैंने पढ़ा है। आप आ जाइए बाद में, मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ, और अगर आप चाहेंगी तो फिर कल सबके सामने भी इसका जवाब सबको दे दिया जाएगा। आज की सारी बात में कोई सवाल आपके जहनों में आया, कोई क्वेश्चन, कोई चीज, आप एक इधर सजेशन बॉक्स रख दें बनाकर, और जो भी लोग आज सुनते हैं ना बात, एक अपनी फीलिंग्स शेयरिंग और सवाल जवाब एंड पे उधर डाल दें। आज की बातें कल शुरू में होंगी, ठीक है। कल हमारा स्केड्यूल सेम यही होगा। प्लीज़ आप सब 9 बजे से पहले इधर मौजूद होंगे। 9 से 9:15 में हम दुआएं सीखेंगे। वो दुआएं इस बुक में हैं, लेकिन अलग से कोई लेना चाहे, वो थोड़ी सी बुक्स हैं मुसीबतों के अज़कार। 10 बजे मेरा जेन 9 पे घुसा हुआ है जी, 10 बजे, सॉरी 10 का मतलब ये कि 10 बजे क्लासरूम सेट हो, ठीक है जी। 9:30 के आ जाइए और बैठिए, जहाँ 2 नफिल पढ़े, मस्जिद है, चाश का वक्त भी होता है, 2-2 नफिल पढ़ के अपनी जगह पे बैठ जाएं। और उसके बाद ये कि शुरू के 15 मिनट में हम दुआएं सीख रहे हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह पूरे कोर्स के दौरान आपको अच्छी खासी दुआएं याद हो जाएंगी। और उसके बाद ये है कि फिर ये हमारा सेशन है, और आखिरी 15 मिनट में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर है। आज शाम का जो प्रोग्राम है अनाउंस करना चाहते हैं आप लोग, बताना चाहते हैं कि कहाँ हो रहा है बाजी, पब्लिकली अनाउंस करना है अपने अपने आज के दर्स को जी। शाम का दर्स ये सिस्टर तस्नीम के घर पे है, बेसिकली वहाँ जो पढ़ना है वो तो फिर एक और ही चीज़ है। हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इखलास और उसके समरात और रियाकारी से दिखावा। ये 3 दिन में वो बुक पूरी होगी, वो भी बुक लट ही है, लेकिन आप इंशाल्लाह बस कागज़ कलम साथ लेकर आएँ। जो भी सिस्टर्स आना चाहती हैं, ये सिस्टर तस्नीम है, इनसे ले लें। कल जिधर है वो लोग भी इनको बता दें, पर 3 दिन में वो इंशाल्लाह टॉपिक कवर हो जाएगा। तो वो सारा इसी इलाके के इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों में हो रहा है, आप लोग आना चाहें 3 to 5 जी जी सुन सकते हैं इंशाल्लाह। जो आएंगे वो उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, जो नहीं आ सकेंगे वो सिर्फ सुनेंगे, बाकी सुनाएंगे, ठीक है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ये माइक ले लीजिए, जरूरत नहीं है, ठीक है।
अस्सलामु अलैकुम सब बहनों को।
वालेकुम।
आपको पता है हमने मस्जिद के लिए थोड़ी सी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, हमने जमीन लिया मस्जिद में, ये पीछे ही ना, पार्किंग के लिए, जिसकी वजह से हमारा ऊपर का हाल बंद है, नीचे वाला भी बंद है। तो इंशाल्लाह हम 4 महीने के अंदर हमने पेमेंट करनी है, तो ताकि हमारे लिए, औरतों के लिए खसूसन आसानी हो ऊपर का।